हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से आयोजित इस साप्ताहिक भागवत कथा में आए हुए सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस भागवत कथा के लिए आए हैं। तो सर्वप्रथम जो भक्त नए हैं उनके लिए हम थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन संस्था के बारे में बताना चाहेंगे। इस संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 में कैलकटा के शहर में हुआ था, एक गौड़ीय वैष्णव परिवार में। और बाल्यकाल से ही उनके पिता ने वैष्णव संस्कार का उनमें सिंचन किया था। 1922 में प्रथम बार अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ उनकी भेंट हुई, और उसी भेंट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा था कि आप एक सुशिक्षित व्यक्ति हो तो आप क्यों नहीं पाश्चात्य देश में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते। इस उपदेश को तब प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपना गुरु भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस उपदेश ने प्रभुपाद जी के पूरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। और इस उपदेश को अपना जीवन बना के प्रभुपाद जी ने 40 वर्ष तक तपस्या की, और 1965 में जलदूत नामक मालवाहक जहाज पे वो 70 वर्ष की आयु में, जब बहुत लोग तो निवृत्त हो जाते हैं, उस वक्त श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन जो है वो शुरू किया। जलदूत विमान पर 2 हार्ट अटैक आने के बावजूद भी अपने गुरु और कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखते हुए बहुत ही कठिन परिस्थिति में, जब श्रील प्रभुपाद के पास में कुछ नहीं था, तब उन्होंने यूएसए अमेरिका में आए वहां पे, और बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद में, 1 साल के बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद में उन्होंने इस्कॉन संस्था का 1966 में न्यूयॉर्क शहर में स्थापना की। ऐसे प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम सभी भक्त यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इस्कॉन जो संस्था है ये पूरे विश्व में जो कृष्ण भक्त हैं उनका एक समूह है, एक संघ है। और इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा पूरे समाज का कल्याण करना है। कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है शास्त्रों के द्वारा दिया गया है, इसको प्रदान करके पूरे समाज का कल्याण करना, ये इस्कॉन का मुख्य हेतु है। इस्कॉन की जो महिमा है वो इतनी बड़ी है कि वो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकती है। लेकिन जो भी भक्त यहाँ पे नए आए हैं तो उनकी जानकारी के मैं थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में बताना चाहूँगा। आज इस्कॉन के लगभग कोई ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं बचा जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर नहीं है। सभी जगह पे इस्कॉन के बहुत ही सुंदर मंदिर हैं। 400 से अधिक मंदिर हैं इस्कॉन के पूरे विश्व में। 26 से अधिक गुरुकुल हैं जहाँ पे बच्चों को भौतिक शिक्षा नहीं लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। कई ऐसे हॉस्पिटल हैं इस्कॉन के जहाँ पे केवल भौतिक रोग का नहीं भव रोग का भी निदान होता है। और हमारे भारत देश में इस्कॉन जो है कई राज्यों में, भारत देश के कई राज्यों में जो म्यूनिसिपल स्कूल हैं यहाँ के, उसमें जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जो जिनके माता पिता जो सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे स्कूल में भी इस्कॉन दोपहर के भोजन के रूप में शुद्ध खिचड़ी प्रसाद मुफ्त में देता है। ऐसे जो आंकड़े मेरे पास में हैं उसके हिसाब से 2 लाख बच्चों को प्रति दिवस इस्कॉन की तरफ से मुफ्त में प्रसाद दोपहर का भोजन दिया जाता है। जिस तरह से मैंने पहले भी वर्णन किया कि इस्कॉन की महिमा को शब्द में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सार में यही कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया है, इस्कॉन संस्था के रूप में प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें सभी रह सकते हैं। ये घर इतना बड़ा है कि पूरा विश्व इसमें समा सकता है, ऐसा घर प्रभुपाद जी ने बनाया है। और इसी इस्कॉन संस्था के अंतर्गत और इस्कॉन संस्था से प्रेरित ये भागवत की जो कथा है वो यहाँ पे 7 दिन के लिए आज से प्रारंभ हो रही है। और भगवान श्री कृष्ण और गुरु की कृपा प्राप्त किए हुए व्यासासीन हमारे आदरणीय और प्रिय श्रीमान His Grace Lal Govind Prabhu ji ke mukharvin se yahan pe 7 din ye katha hogi aur is katha ka shirshak hai The Art of Successful Death. ये जो शीर्षक है ये वास्तव में बहुत ही रुचिजनक है क्योंकि जब से हमारा जन्म होता है जब से हमारा जन्म हुआ है तब से एक ही शिक्षा मिली है कि इस जीवन को सफलतापूर्वक कैसे जिया जाए इसकी शिक्षा मिलती है बाल्यकाल से हमें ये बताया जाता है कि ये करना है ये नहीं करना है स्कूल में जाके अभ्यास करना है जब बड़े हो जाते हैं तो ये बताया जाता है कि अब अधिक धन कमाना है गृहस्थ जीवन जीना है और जिस तरह से कि भी हम जो हमारा जीवन है इसको हम सफलता से कैसे जी सकते हैं इसके बारे में ही शिक्षा दी जाती है लेकिन अपने मृत्यु को किस तरह से सफल बनाया जाए ये शिक्षा कहीं नहीं मिलती है ये शिक्षा मिलती है केवल शास्त्र में और यही शीर्षक के ऊपर यहाँ पे आगे अब 7 दिन कथा होने वाली है तो हम हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी से नम्र विनंती करेंगे कि ये आज से कथा का आरंभ करें और सभी भक्तों से हमारी नम्र विनंती है कि श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है भगवान के विग्रह स्वरूप को सेवा करने के लिए हमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन लगते हैं जो हम सभी के पास नहीं है भगवान की विग्रह की सेवा करने के लिए हमारी ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए लेकिन ये भगवान का ऐसा स्वरूप है ये भगवान का ऐसा ब्रह्म शब्द रूपी स्वरूप है जिसे पान करके हर कोई भगवान की सेवा कर सकता है तो सभी भक्तों से हमारी नम्र विनंती है कि जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं कृपया शांति बनाए रखें और जो भी भक्त मोबाइल फोन लेके आए हैं तो सभी से विनंती है कि मोबाइल फोन आप स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रख दें ताकि कथा के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो हरे कृष्णा
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Radhe Meri Swamini Mera Radhe जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे जय राधा माधव कुंज बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी
जय 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 राधा माधव
यमुना तीर मन चाहा
राति रावण जाने
यमुना तीर रावण जाने
यमुना तीर रावण जाने
जय राधा माधव कुंज
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
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 यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन
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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यमुना तीर रावण चारि
यमुना तीर रावण चारि
जय राधा माधव कुंज बिहारी
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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे
जय 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 राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी 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 राधे
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय गौरनिताय गौरनिताय
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु जय प्रभु पाद
जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय प्रभु पाद
प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय प्रभु पाद
प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय
निंदन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्वीर्कृत्यं भुजद्वयं हरिहरि त्युच्चे वदन्तम् नृत्यन्तं द्रुतमाशु निर्जरचये सिञ्चन्तमुखीं तुलं गायन्तं निजपार्षदे परिकृतं श्रीगौरचन्द्रं नुम श्रीगौरचन्द्रं नुम श्रीगौरचन्द्रं नुम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा अहं न जाने यस्या कदापि वसनान् चलखेलनोत्थ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमा योगी मधुर्गमगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभो दिशेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप पतिति तिष्ठतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया हपुराण गुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरु अग्रे करुणा मत पांडवाना दुशासनेना हत वस्त्र केशा कृष्णा तदाग्रो शदनन्यना मधुकेट भारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्य मामके शवलोकनाथ गोविंद दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गो पवदु समूह प्रतीक्षणम्पि जरसारिकाणा स्खलद्गिरं वा चयितुं प्रवूतो गोविंद दामो दरमाधवेति विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारि पादा पितचित वृत्ति दध्यादिकमो हवशादवोच गोविंद दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवेति प्रचोदिताजे न पुरा सरस्वती वितन्वताज ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भुरतेर्महतभि ययिमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमूश पूरुष भुंते गुणनशो रशोडशात्मक सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि में।
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित सात दिवसीय इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हमारे आराध्य भगवान श्री राधा गिरधारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनके चरणों में कुछ भक्ति करना सीखे हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा दृष्टि से कुछ भक्ति में लगे हैं। ऐसे श्री राधा गिरधारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात इस जगत के नाथ जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुभद्रा देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और समस्त जीवों को बल प्रदान करने वाले बलदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस कलयुग के करुणा वरुणालय अवतार जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर कलयुग के जीव के ऊपर कृपा करने के लिए आज से 523 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से एक मूर्ख एक बालक भी सिद्धांत रूपी सागर को पार कर सकता है। वैसे तो शास्त्र अपार है, अनंत है, और इस शास्त्र को समझना, इसको आत्मसात करना, जीवन में उतारना बहुत कठिन है, परंतु यदि किसी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए तो निश्चित चाहे वह मूर्ख हो, चाहे बालक हो, चाहे पापी हो, वही सिद्धांत रूपी सागर को आसानी से पार कर सकता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मैं जो भागवत कथा करने जा रहा हूं, इस भागवत कथा के परम मर्मज्ञ भागवत ग्रंथ को समझने वाले और समझकर इसके ऊपर टीका लिखने वाले बड़े बड़े आचार्य, जिसमें प्रमुख है श्रीपाद श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि समस्त आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात कृष्ण भावनामृत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पूरी दुनिया में प्रचार करने वाले इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात जिनकी कृपा से, जिनके परम अनुग्रह से, जिनकी कथा सुन सुनकर, जिनकी वाणी सुनकर हमें संसार में कुछ कुछ जगह पर थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, ऐसे हमारे दीक्षा गुरु परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और उसके बाद हमारे असंख्य शिक्षा गुरु, सभी शिक्षा गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहां पर पधारे हुए समस्त श्रोतागणों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरी मति भगवान श्री कृष्ण में और भागवत में लगाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हो। आप सबके चरणों में प्रणाम और आपको धन्यवाद। और अंत में मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राधा गिरधारी मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट इस ग्रेस कमलोचन प्रभु को, जिन्होंने यहां पर भागवत सप्ताह करने के लिए मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को चुना। यद्यपि भागवत परमहंस संहिता है, भागवत ग्रंथ परमहंसों के लिए है। बड़े बड़े भक्त भागवत इस भागवत में अवगाहन करते हैं। मेरे जैसा तुच्छ क्या भागवत को समझेगा और क्या कथा करेगा। परंतु गुरुजनों के आशीर्वाद से, अनुग्रह से और उनकी अनुमति से यहां पर मैं भागवत कथा करने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं। आप सब भक्तों के चरणों में निवेदन, यदि कुछ भूल हो जाए, यदि कुछ कमी रह जाए तो क्षमा कीजिएगा। और यदि कुछ भूल आ भी जाए तो आप सब जानते हो कि हम परम मूर्ख हैं और आप सब परम हंस हैं। जैसे हंस का स्वभाव होता है दूध और पानी को अलग कर देना, यदि हंस को दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो हंस दूध दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार आप सब भक्तगण मेरी इस कथा के गुण को स्वीकार करें और दोष को उस पानी की तरह दूर फेंके और इससे अपने जीवन को उज्जवल करें। आप सब जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि इस 7 दिवसीय कथा का शीर्षक दिया गया है द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ। द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ, किस प्रकार से हमारी मृत्यु को हम सफल बना सकते हैं यह यहां पर सिखाया जाएगा। वैसे तो इस संसार में आर्ट ऑफ लिविंग सभी जगह पर सिखाया जाता है, प्रायः सब लोग जीवन जीने की कला सीखते हैं। परंतु आप लोगों के मन में विचार हुआ होगा कि यहां पर आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ ये शीर्षक क्यों दिया गया है। परंतु भक्तों, यदि आप बुद्धि से विचार करो तो इस संसार में कौन जी रहा है। अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करो, हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। इस संसार के लोगों की मान्यता है कि व्यक्ति पूरा जीवन जीता है और एक दिन मरता है। परंतु वास्तविक चीज यह है कि व्यक्ति जन्म एक बार लेता है और पूरा जीवन मरते रहता है। पूरा जीवन मरना है, जीना नहीं है। जीवन किसे कहते हैं? जीवन का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, कुछ प्राप्त होना, इसे जीवन कहते हैं। परंतु अपनी सूक्ष्म बुद्धि लगाइए जो हमारे पास जीवन मिला है, हमारे पास जो समय है, क्या वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? यदि हमारा समय बढ़ता तो यह सत्य बात है कि हम जी रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। परंतु गीता का एक ध्रुव सिद्धांत है, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। व्यक्ति जिस दिन इस संसार में जन्म लेता है उस दिन वह अपनी मृत्यु की डेट नक्की करके आता है। विधाता ब्रह्मा जी और भगवान जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की तारीख दे देते हैं। और भगवान का सिद्धांत इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म भगवान का सिद्धांत है कि भगवान उसके जीवन में लिख यहां तक लिख देते हैं कि यह कितना सांस तक जिएगा, यह व्यक्ति इतना करोड़, इतने हजार, इतनी सौ और इतना सांस लेगा और बाद में मर जाएगा। जन्म लेते हैं एक बार, जन्म लेते हैं एक दिन और मरते हैं पूरा जीवन। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है और विधाता के द्वारा उसकी उम्र 90 साल की है और धीरे धीरे वह जैसे बड़ा होता है, जैसे दिन निकलते हैं, वैसे उसके जीवन से वह समय जा रहा है। प्रति साल, प्रति महीने, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकेंड व्यक्ति मर रहा है। हम लोग प्रति मिनट, प्रति सेकेंड मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। यदि जीते तो हमारा जीवन बढ़ता, परंतु घट रहा है। इसीलिए भक्तों, इस संसार को हमारे शास्त्र ने मृत्यु लोक कहा है। और सभी लोगों को अतल, वितल, तलातल, पाताल, रसातल, जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक इत्यादि सब लोक हैं, परंतु जिस लोक पर हम सब रह रहे हैं यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का अर्थ क्या होता है? इस लोक को मृत्यु लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर व्यक्ति कभी भी मर सकता है, कभी भी किसी भी क्षण यहां पर व्यक्ति मर सकता है। तो हमें मरना है, एक ना एक दिन आत्यंतिक मृत्यु आती है, हम संपूर्ण मर जाते हैं, परंतु प्रतिदिन हम धीरे 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 मर रहे हैं। संसार के लोग जीना सिखाते हैं, परंतु शास्त्र हमें मरना सिखाता है। वास्तव में जीना नहीं, मरना सीखना चाहिए। यदि किसी ने मरना सीख लिया तो वह मनुष्य जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहां पर हम आपको मरना सिखाएंगे और किस प्रकार से मरा जाता है, किस प्रकार से की मृत्यु होती है, यह शास्त्र में बताया गया है। कुछ लोग पूछेंगे ये शास्त्र क्या होता है। भगवान से विमुख होकर जीव जब इस संसार में आता है तो उस जीव का उद्धार करने के लिए, जीव को सुखी करने के लिए और उस जीव को भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए भगवान शास्त्र को प्रकट करते हैं। अक्सर मैं दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए आप किसी शोरूम में नया टीवी खरीदने गए हैं। आपने टीवी देखा, आपको बहुत अच्छा टीवी लगा और आप उस टीवी को लेकर जब घर पे आ रहे हो तो टीवी के साथ वो टीवी वाले कुछ कैटलॉग मैनुअल देते हैं, एक किताब देते हैं और उस किताब में लिखा होता है कि इस टीवी को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसकी चैनल घुमानी है, किस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ाना है, किस प्रकार से ऑन करना है। तो टीवी के साथ साथ एक किताब दी जाती है जिसमें वह टीवी को कैसे इस्तेमाल करना है ये सब कुछ दिया होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान से विमुख होकर जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो तो जीव का कल्याण करने के लिए इस भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहिए, यह जनाने के लिए भगवान कैटलॉग देते हैं, एक मैनुअल देते हैं। परंतु मान लीजिए वह व्यक्ति उस दुकान वाले को कहे कि मैं टीवी को लेकर जाता हूं परंतु मुझे वह मैनुअल नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए। बिना किताब के यदि वह टीवी अपने घर पर लेकर आ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है टीवी किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो वह टीवी में उंगली करना शुरू करता है और पूरे सभी स्विच दबा दबा कर उस टीवी को बिगाड़ देता है। यदि उसने वह किताब में देखकर उस टीवी को इस्तेमाल किया होता तो वह टीवी अच्छी तरह से चलता, परंतु बिना किताब के यदि वह टीवी इस्तेमाल करता है तो वह टीवी बिगड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, भगवान ने जब यह संसार बनाया, जीव को यहां पर भेजा, यह संसार बनाने के साथ इस संसार में कैसे रहना चाहिए यह भी भगवान ने बताया। और भगवान ने जो जो चीज बताई वह भगवान के अपने कैटलॉग में, अपने मैनुअल में है, और उस मैनुअल को शास्त्रीय भाषा में शास्त्र कहते हैं। यदि हम शास्त्र को छोड़कर जीवन जीना चाहेंगे तो हमारा जीवन उस टीवी की तरह बिगड़ जाएगा। प्रायः इस संसार में सब लोग बिना शास्त्र के शास्त्र को नहीं जानते हैं और शास्त्र को जाने बिना जीवन जीते हैं, इसलिए सब लोग दुखी हैं। परंतु यदि शास्त्र का कोई अध्ययन करे, शास्त्र में दी गए सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करे तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। भगवान की बहुत बहुत कृपा है, भगवान ने बहुत कृपा करके हमको शास्त्र प्रदान किए, परंतु हम मूर्ख जीव शास्त्र को पढ़ने की बात तो दूर रही, शास्त्र के सामने देखते तक नहीं। भगवान जानते हैं कि संसार में रहने वाला जीव माया में इतना फंसा हुआ है कि स्वतः उसे स्मृति का ज्ञान नहीं हो सकता है। माया मुक्त जीव नाही स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवे र कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने जीवों के ऊपर कृपा करके शास्त्र का निर्माण किया और वह शास्त्र हमें मरना सिखाता है, और शास्त्र में भी सभी शास्त्रों का फल है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में कई सारा पार्ट होता है, मूल होता है, थड होता है, डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल भी होते हैं। वृक्ष में बहुत चीज होती है परंतु वृक्ष का सार है फल। वैसे ही समस्त वेद और शास्त्र का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। समस्त शास्त्र का निचोड़ है, समस्त शास्त्र का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के प्रवक्ता, श्रीमद् भागवतम के मूल प्रवक्ता भगवान आदि नारायण, जिस भागवत में हमारे आचार्य कहते हैं शत कोटि सौ करोड़ श्लोक है, भगवान नारायण के मुख से भागवत ग्रंथ का उच्चारण हुआ है और वैकुंठ में वह भागवत ग्रंथ में सौ करोड़ श्लोक है। और भगवान की भी इच्छा होती है कि यह भागवत इस संसार के जीवों को मिले। एक बार भगवान विष्णु अपने धाम में बैठे थे, लक्ष्मी जी चरण सम्मान कर रही थी, भगवान की इच्छा हुई कि यह भागवत यदि इस संसार में किसी को मिल जाता तो वह धन्य हो जाता। भगवान के हृदय में इच्छा हुई कि यह भागवत किसी को मिले, यह भागवत किसी को मिले, परंतु योग्य पात्र कोई नहीं मिला। और भगवान की इच्छा से गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी प्रकट जब हुए, भागवत के तृतीय स्कंद में कथा है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उस कमल की डंडी में बहुत बहुत ढूंढा, मुझे कहां जाना है, कहां रहना है। देवताओं के 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी वहां पर अवगाहन किए, परंतु ब्रह्मा जी को कोई सोर्स, कोई जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप के बारे में नहीं जानते थे, मुझे क्या करना है कुछ भी नहीं जानते थे। तब जाकर ब्रह्मा जी ने दो अक्षर सुने और वह अक्षर थे तपह। ब्रह्मा जी जैसे ही तपह अक्षर सुने, तुरंत ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तपस्या करना है, और ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। भक्तों, इस संसार के प्रथम जीव इतने बुद्धिमान है कि एक बार आवाज सुनने से समझ गए कि मुझे तपस्या करनी है, परंतु आज के लोगों को बार बार प्रतिदिन प्रति घंटा कहा जाता है माला जपिए, भगवान का नाम लीजिए, परंतु कोई नहीं जपता। भक्त लोग घर घर जाकर हाथ में माला जोली पकड़ाते हैं, परंतु कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। परंतु हमारे परदादा, दादा के दादा, प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने केवल सुना था तब समझ गए तपस्या कर रहा है। और यह चरितार्थ करके दिखाया कि संसार में घूमने से कोई फायदा नहीं है, यदि तपस्या करते हो, भक्ति करते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे पास आकर मिलते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, कभी नहीं मिलेंगे। भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, भगवान ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो ताकि भगवान आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान ने वह शत कोटि 100 करोड़ श्लोक का भागवत का केवल सार ब्रह्मा जी को दे दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने अपनी बंसरी के द्वारा केवल 4 श्लोक अहमेवा समेवाग्रे चतुर श्लोकी भागवत, भागवत का सार ब्रह्मा जी को सुना दिया। भगवान के पास से भागवत ब्रह्मा जी के पास आया और ब्रह्मा जी ने वही भागवत का ज्ञान अपने पुत्र नारद मुनि को दिया। नारद मुनि के पास भागवत का संपूर्ण परम ज्ञान। अब नारद मुनि तो यह भागवत के ज्ञान को लेकर घूमते रहते हैं, परंतु यह भागवत हमारे पास कैसे आया, यह कथा हमारे शास्त्र में दी गई है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में बैठकर सोचा कि संसार के लोग पाप में लगे हुए हैं और कलयुग आ रहा है, इसलिए प्रायः कले दोषो निधे राजन, कलयुग में बहुत बहुत दोष है, कलयुग में सब लोग पाप की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। और आपके लिए कहूं तो द्वापर युग तक ये जितना भी शास्त्र, जितना भी वेद, जितना भी ज्ञान था, ये सब स्मृति में था, लिखा हुआ नहीं था, लिपिबद्ध नहीं था। परंतु भगवान ने अपने धाम में बैठकर सोचा कि कलयुग के लोग प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्यो कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतय मंद भाग्या पत्रता। कलयुग में मंद बहुत कम आयुष्य है, बहुत कम बुद्धि है, इसलिए कलयुग के लोगों के लिए यह श्रुति ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए भगवान ने यह सभी वेद और शास्त्र को लिपिबद्ध करने के लिए वेद व्यास जी का अवतार लिया। और वेद व्यास जी जितने भी शास्त्र थे सभी शास्त्र को लिपिबद्ध करते गए। वेदव्यास जी ने वेदों का 4 भाग में विभाजन किया, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये एक एक वेदों में कई कई पाठ है, कई कई विभाजन है, और यह वेदों की संख्या असीम है। वेदों की रचना करने के बाद वेदव्यास जी ने 108 उपनिषद की रचना की। वेदव्यास जी का एक ही उद्देश्य था कि यह शास्त्र को पढ़कर, शास्त्र को सुनकर कलयुग के लोग सुखी हो और कलयुग के लोग भगवान के धाम को प्राप्त करें। कलयुग के जीव का कल्याण करने के लिए वेद व्यास जी सभी शास्त्र को लिपिबद्ध करने लगे और लिपिबद्ध करते गए अनंत अनंत शास्त्र, चार वेद, 108 उपनिषद और तत्पश्चात वेद व्यास जी पुराणों को लिखने लगे। वेद व्यास जी ने बहुत बहुत पुराणों को लिखा और इनकी संख्या भी अनंत है। सर्वप्रथम वेद व्यास जी मार्कंडेय पुराण को लिखे जिसमें 9000 श्लोक हैं, ब्रह्म पुराण जिसमें 10000 श्लोक, वामन पुराण जिसमें 10000 श्लोक। श्लोक इसलिए मैं गिना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि छोटी सी किताब नहीं लिखी, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे। लिंग पुराण जिसमें 11000 श्लोक है, 12000 श्लोक से परिपूर्ण वेदव्यास जी ने ब्रह्मांड पुराण की रचना की। 14000 श्लोक युक्त वेदव्यास जी ने मत्स्य पुराण की रचना की। तत्पश्चात 14500 श्लोक वाले भविष्य पुराण की रचना की। फिर भी वेदव्यास जी के कलयुग के जीवों के लिए इतनी करुणा उमड़ रही थी, वे पुराण लिखते गए लिखते गए। आगे वेदव्यास जी 15400 श्लोक से रचित अग्नि पुराण की रचना की। तत्पश्चात 17000 श्लोक वाले नरसिंह पुराण की रचना वेदव्यास जी किए। तत्पश्चात वेदव्यास जी गरुड़ पुराण की रचना किए जिसमें 19000 श्लोक थे। अभी भी वेदव्यास जी का मन नहीं भर रहा था। वेदव्यास जी सोचे कि और भी कलयुग के जीव के उद्धार के लिए मुझे कुछ लिखना चाहिए। तब वेदव्यास जी ने 23000 श्लोक से रचित विष्णु पुराण की रचना की। फिर भी वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं, अंत में वेदव्यास जी ने 24000 श्लोक रचित वायु पुराण की रचना की। इतना नहीं, वेदव्यास जी को और कलयुग के जीवों के लिए और करुणा उमड़ आई तो 24000 श्लोक से पूरित वराह पुराण की रचना की। फिर भी वेदव्यास जी को संतुष्ट नहीं हुए तब 25000 श्लोक युक्त नारद पुराण की रचना की। फिर भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे, कुछ घट रहा था, कुछ कमी थी। तब वेद व्यास जी ने सोचा कि बस अब अंतिम पद्म पुराण की रचना की जिसमें 55000 श्लोक थे। फिर भी वेद व्यास जी दुखी के दुखी, स्वयं संतुष्ट नहीं, कुछ घट रहा था, इसलिए वेदव्यास जी ने एक बृहत ग्रंथ की रचना की जिसमें 81000 श्लोक थे और उस ग्रंथ का नाम हुआ स्कंद पुराण। इतने इतने 17 पुराण की रचना वेदव्यास जी ने कर दी, चार वेद की रचना की, 108 उपनिषद की रचना की। फिर भी वेदव्यास जी के मन में हुआ कि यह वेदों के ऊपर केवल ब्राह्मण का अधिकार है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। तो द्विज बंधुओं के लिए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए वेद व्यास जी ने 100000 श्लोक से युक्त महाभारत की रचना की। अनंत अनंत वेद और शास्त्रों की रचना वेद व्यास जी किए, परंतु फिर भी इतनी इतनी रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। प्राय सब कुछ वेदव्यास जी का पूरा जीवन चला गया यह रचना करते करते, परंतु वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं हुए, वेदव्यास जी स्वयं प्रसन्न नहीं हुए। वेदव्यास जी के मन में यही बात खटक रही थी कि मैंने कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए इतने इतने ग्रंथों की रचना की, परंतु इस ग्रंथ से मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो कलयुग के लोग कैसे संतुष्ट हो पाएंगे। जब लिखने वाला संतुष्ट नहीं है, जब लिखने वाला सुखी नहीं है, तो इसे पढ़कर पढ़ने वाले और सुनने वाले लोग कैसे सुखी हो सकते हैं। वेदव्यास जी बहुत दुखी हुए और मन ही मन में सोच रहे थे कुछ घट रहा है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, परंतु वेदव्यास जी अपनी कमी को पूर्ण नहीं कर सके। तो वेदव्यास जी अनंत अनंत शास्त्रों की रचना करने के बाद भी परम असंतुष्ट, परम दुखी थे। डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, कितना भी सर्जन डॉक्टर भी क्यों न हो, परंतु अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता है। उस डॉक्टर को भी अपना इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वेद व्यास जी शास्त्रों का व्यास करने वाले भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, परंतु स्वयं समझ नहीं पाए कि क्या घट रहा है, क्या कमी है। मैंने इतने इतने मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन, लिंग, ब्रह्मांड, मत्स्य, भविष्य, अग्नि, नरसिंह, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, नारद, पद्म, स्कंद, ये सभी पुराणों की रचना की, परंतु मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। कुछ घट रहा है, कुछ कमी है, क्या कमी है? वेद व्यास जी मन ही मन में दुखी थे, परंतु जब शिष्य दुखी होता है तो गुरु अपने शिष्य की बात को जान लेते हैं। वेद व्यास जी के गुरु नारद जी थे। नारद जी भगवान के मनो अवतार है। नारद जी जान गए कि वेद व्यास जी कुछ संकोच में है। नारद मुनि आकाश के मार्ग से वेद व्यास जी को मिलने के लिए, वेद व्यास जी की खबर लेने के लिए आए। जब नारद मुनि वेद व्यास जी के पास आए, जैसे एक दुखी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति अपना हाथ डॉक्टर के हाथ में रख देता है, वैसे वेद व्यास जी अपना हाथ नारद मुनि के चरणों में रख दिए और हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, प्रभु मेरा कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी कैसे हो? तो वेद व्यास जी कहते हैं, प्रभु मैं नहीं जानता हूं मैं कैसा हूं, आप बताइए मैं क्या कैसा हूं। आमी की केने अमाए जार ताप त्रय, आप बताइए। वास्तव में जब गुरुजन, जब वरिष्ठ भक्त हमसे मिलते हैं, तो हमें गुरुओं से पूछना चाहिए कि गुरुजी बताइए मैं कैसा हूं। हर वक्त गुरुजी के सामने हमारी बड़ी बड़ी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, गुरुजी मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। नारद मुनि वेदव्यास जी को कह रहे हैं, बताइए मैं कैसा हूं। और इसी प्रकार जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो सनातन गोस्वामी ने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु आमी की मैं कौन हूं। वेद व्यास जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि प्रभु, नारद मुनि वेद व्यास जी के गुरु हैं, भगवान के मनो अवतार है, भगवान के मन की बात को जानकर उसे पूर्ण करने वाले हैं, परम भक्त परम ज्ञानी है। वे समझ गए कि वेदव्यास जी ने क्या, वेदव्यास जी की रचनाओं में क्या कमी है, वेदव्यास जी क्यों असंतुष्ट है। नारद मुनि समझ गए, परंतु नारद मुनि वेदव्यास जी को कटाक्ष करते हुए कहते हैं, जिज्ञासीत मदितम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि शोतत्यात्मानम कृतार्थम इव प्रभो। कटाक्ष में कहते हैं, प्रभो हे वेदव्यास जी, आप तो ब्रह्म के बारे में जानते हो और आपने अनेक अनेक वेद शास्त्र पुराण लिखे, उसमें ब्रह्म का प्रतिपादन किया, आपने ब्रह्म तत्व का वर्णन किया और ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म कैसा होता है, ब्रह्म के बारे में आपने सब कुछ बताया, तो इतना इतना ब्रह्म का ज्ञान होते हुए भी आप दुखी कैसे हो? फिर भी आप दुखी हो। नारद मुनि दूसरे शब्दों में बता दिए, यदि समझदार व्यक्ति हो तो वह समझ सकता है। जैसे भगवान के तीन फेस होते हैं, भगवान तीन स्वरूप में होते हैं, वदन्ति तत्तत्व विदह तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति भगवान इति परमात्मा इति शब्द थे। भगवान ब्रह्म के रूप में संसार के सभी वस्तुओं में है, वही भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है और वही भगवान अपने निज स्वरूप में, अपने धाम में विराजते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने ब्रह्म के विषय में ही लिखा है, केवल ब्रह्म के बारे में बताया है, भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया है। वेद व्यास जी कहते हैं, अतस्तेव में सर्वमिदं च व्यक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे। हे गुरु जी, नारद जी, आप जो कह रहे हो सब कुछ सत्य है, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप साफ साफ बताइए कि मेरी रचना में कमी क्या है। मैंने इतना इतने ग्रंथ लिखे, इतने श्लोक लिख दिए, इतना शास्त्र लिखे, इस शास्त्र में क्या कमी है यह बताइए। तब नारद जी कहते हैं, भवतानुदीत प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम अखिलम। नारद मुनि अंत में साफ साफ कहते हैं कि व्यास जी, हे वेद व्यास जी, आपने जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखा, परंतु जो आपने लिखा इससे जीवों का कल्याण नहीं होगा। आपने जो लिखना था, जो मुख्य बात थी, वह आपने नहीं लिखा, और वो है भवता भगवान की परम पवित्र लीला। भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला का वर्णन आपने नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला का ग्रंथ आपने नहीं लिखा। यथा धर्मदश्रया मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वसुदेवस्य महिमा यनुवर्णित। आपने बहुत बहुत सिद्धांत की बातें लिखी, बहुत बहुत आत्मा की बातें लिखी, आत्म साक्षात्कार की बातें लिखी, परंतु भगवान की लीला के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा। नारद मुनि डांटते हुए कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, न यद वसित्रम पदम हरेर यशो जगत प्रवितम प्रगुणित करहिचित। वेदव्यास जी, जो वाणी भगवान का कीर्तन नहीं करती है, जिस वाणी से भगवान के गुण रूप लीला की गाथा नहीं निकलती है, वह वाणी कैसी है? ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली, इस ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाली भगवान की लीला जिसके मुख से नहीं निकलती है, और भगवान की लीला के अलावा जो जो चीज निकलती है, ऐसी चीज को विद्वान लोग कौवे का तीर्थ मानते हैं। आपने जो लिखा है अब तक, वह सब कौवे का तीर्थ है। कौवे का तीर्थ का अर्थ क्या होता है? कौवे लोग जहां पर एकत्रित होते हैं, कौवे का भोजन होता है मल, कचरा कूड़ा के ऊपर बैठ जाते हैं। कौवे का तीर्थ है, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े मुनि रसज्ञ लोग इसमें अवगाहन नहीं करते। न तद्वाद विसर्गो जनताद विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोक मबब्द वत्यपि। और यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के गुण का कीर्तन करता है, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनता है, पढ़ता है, तो उनके जीवन का सभी पाप मुक्त पाप खत्म हो जाता है। नारद मुनि ने साफ साफ कह दिया कि वेदव्यास जी, आपने बहुत बहुत लिखा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला रचित ग्रंथ नहीं लिखा। आपने बहुत बहुत पुराण लिखे, परंतु जो लिखना चाहिए वह आपने नहीं लिखा। आपने तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी जिस चीज से कलयुग के लोग झगड़ा करेंगे। नारद, हे वेदव्यास जी, आपने ऐसा कार्य किया है, संसार के लोग आपके कार्य से झगड़ा करेंगे। आपने शिव पुराण लिखा तो उसमें शिव जी की महिमा गाई, लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं, वेदव्यास जी ने शिव पुराण लिखा तो शिव जी महान है, शिव जी भगवान है, वही सबके हृदय में है, वही प्रलय करते हैं, सब कुछ करते हैं। गणपति पुराण लिखा तो गणपति ही सब कुछ है, देवी पुराण लिखा तो देवी ही सब कुछ है। नारद जी, वेदव्यास जी, ये सभी पुराण पढ़कर कलयुग के लोग जब आपस में मिलेंगे, तो आपस में मिलकर सब लोग झगड़ा नहीं तो और क्या करेंगे? तो वह कलयुग के झगड़े का दोष आपको लगा है, इसलिए आप दुखी हो। और आपने जो लिखना चाहिए, वास्तव में जो परम प्रभु ईश्वर परमात्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला रचित ग्रंथ आपने नहीं लिखा। इसलिए जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की लीला रचित श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं करते हो, तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे और कलयुग के आने वाले लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हे वेदव्यास जी, यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि कलयुग के लोगों को सुखी करना चाहते हो, यदि सबको भगवान के धाम में भेजना चाहते हो, तो भागवत ग्रंथ की रचना करो। भागवत ग्रंथ सुनकर पढ़कर उनके भगवान के चरण में व्यक्ति प्रीति प्रेम उत्पन्न कर सकता है। नारद मुनि वेदव्यास जी को कह रहे हैं, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। नारद मुनि कहते हैं कि मैं कौन था, मेरा पहला जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ और मेरे पिता ने कहा कि प्रजा की सृष्टि करो। नारद मुनि जब ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि प्रजा की सृष्टि करो। अब जो व्यक्ति जिस काम में लगा है तो व्यक्ति चाहता है सब लोग मेरी तरह ही बन जाए। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए नियुक्त किया है। तो नारद मुनि का प्राकट्य जब ब्रह्मा जी से हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि प्रजा की उत्पत्ति करो। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी को अपने पिता को साफ साफ कह दिया, प्रभु पिताजी आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, परंतु विवाह नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भक्ति का संपूर्ण रस, भगवान की भक्ति का अमृत छोड़कर मैं विष का घड़ा पीना नहीं चाहता हूं। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख, अमृत छोड़कर जो विष मांगता है तो मूर्ख है। पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को नारद मुनि को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम देवता बन जाओ और देवता बनकर तुमसे अपराध होगा, अपराध होकर तुम शूद्र बनोगे। ब्रह्मा जी के अपराध से तुरंत नारद मुनि उपबरहन नाम के देवता हुए और 50 अप्सराओं के साथ विवाह किया। एक बार पुष्कर क्षेत्र में रंभा नाम की अप्सरा का नृत्य देख रहे थे, उस वक्त ब्रह्मा जी आए और नारद मुनि को श्राप दिया और उपबरहन नाम के देवता को श्राप देकर वह उपबरहन नाम का देवता अर्थात नारद मुनि का तीसरा जन्म हुआ द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से। तो नारद मुनि वेदव्यास जी को अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं दासी का पुत्र था, मैं शूद्र के घर पर जन्म लिया था, मेरे पिताजी मर चुके थे, परंतु मेरी मां किसी के घर पे बर्तन साफ करके अपना जीवन बिता रही थी। हे वेदव्यास जी, ऐसी ही स्थिति में एक दिन चतुर्मास चल रहा था, चार पवित्र मास चल रहे थे, उनमें कुछ साधु भक्तों की मंडली आई और उनकी सेवा करने का मौका मेरी मां को मिला। मेरी मां ने उस साधुओं की बहुत सेवा की और मैं भी मेरी मां के साथ साधुओं की सेवा करने के लिए जाता। उस वक्त वह साधु लोग मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते थे। बारंबार नित्य निरंतर मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता रहा और जितना सुनता गया उतना मुझे आनंद आता गया। तो भगवान की कथा सुनकर और वो साधुओं का उच्चिष्ट, वो साधुओं का जूठन प्रसाद खाकर उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, वो साधुओं का उच्चिष्ट खाकर आज मैं नारद बना हूं। मेरे में ऐसी भक्ति आई, कृष्ण के प्रति इतना अनुराग हुआ, संसार के प्रति इतना वैराग्य हुआ, फिर मैं मुड़कर मेरी मां के प्रति नहीं देखा। और सहस्त्र युग पर्यंत और जब प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हुआ, तब यह सारा विश्व का प्रलय हुआ और फिर से जब यह विश्व प्रकट हुआ तब फिर से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ। नारद मुनि कह रहे हैं कि वह साधु संतों के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर और उन साधुओं का उच्चिष्ट खाकर आज मैं नारद बना हूं। आज मेरे पास ऐसा शरीर है, इस शरीर से मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकता हूं। वीणा के ऊपर भगवान का नाम लेता रहता हूं, जपता रहता हूं और आज मुझे भगवान के धाम में जाने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे तब भगवान के पास, जब चाहे तब किसी के भी पास जा सकता हूं। तो ये नारद मैं तब बना जब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना। मेरा अनुभव है वेदव्यास जी, मैं परम सुखी हूँ, परम संतुष्ट हूँ और मेरी भक्ति से भगवान संतुष्ट हैं। यदि आपको सुखी होना है, आपको संतुष्ट होना है, भागवत की रचना करो और इस भागवत की रचना करने से आने वाले कलयुग के लोग भी संतुष्ट, सुखी और भगवत प्राप्ति करेंगे। इतना कह के नारद मुनि चले गए और यहाँ पर वेद व्यास जी नारद मुनि के कहने के अनुसार ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम पश्चिमे तटे उस बद्री आश्रम में, बद्रीनाथ में, बद्री का आश्रम में वेद व्यास जी बेर के वृक्ष के नीचे बैठकर सम्याप्रास नाम के आश्रम में बैठे और बैठकर आसीनो अप उत्पृश्य प्रणी दज्यो मनस्वयं वे समाधि में स्थित हुए। वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और वेद व्यास जी समाधि में बैठकर भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणी हिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तदपाश्रयम्। वेदव्यास जी समाधि में बैठे और समाधि में वेदव्यास जी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान की माया का दर्शन किया। वेदव्यास जी ने देखा कि भगवान की माया दुरू है, भगवान की माया से संसार के सभी लोग दुखी हैं, भगवान की माया से सभी लोग सताए जा रहे हैं और वेदव्यास जी के हृदय में संसार के लोगों की करुणा, संसार के लोगों के लिए करुणा उमड़ पड़ी। वेदव्यास जी ने देखा कि माया सबको सता रही है, कोई भी माया से मुक्त नहीं है, संसार में सब लोग माया से ग्रस्त हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह माया भगवान की शक्ति है, भगवान की तीन शक्ति है और उनमें से एक है माया, यह जड़ जगत में जो रहती है महामाया। इस संसार के लोगों को इतना दुखी करती है, इतना दुखी करती है जैसे पहले के राजा महाराजा किसी अपराधी दंडित व्यक्ति को दंडी करते थे। कहते हैं कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए राज दंड जेन येन नदी ते छुबाए। जैसे पहले के महाराजा किसी चोर या अपराधी को नदी में, नाव में बिठाकर नदी में लेकर जाते और बीच नदी में उस अपराधी के बाल पकड़कर नदी में डुबाया जाता और वह छटपटाता, वह सिर के बल, वह बाल के बल वह नदी में रहता। जब वह छटपटाकर अंतिम सांस पर पहुंच जाता तब वह सैनिक लोग उसे कुछ देर के लिए बाहर निकालते, चैन की सांस लेता। जैसे ही दो घड़ी चैन की सांस लिया तुरंत उसे उस पानी में डुबाते और कई देर तक रखते। जब मरने का अंतिम क्षण आ जाए तब उसे फिर से बाहर निकालते। तो जैसे पहले के राजा महाराजा अपराधियों को पानी में दंडित करते थे वैसे माया इस संसार के लोगों को दुखी करती है। इस संसार के सब लोग दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है, परंतु जब दुख से व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब माया कुछ सुख दे देती है। वास्तव में वह सुख नहीं है, वह दुख निवृत्ति की स्थिति है, परंतु हम उसे सुख समझ बैठते हैं। सबको दुखी करती है माया, सबको सताती है माया। वेद व्यास जी ने यह देखा और वेद व्यास जी ने अपनी समाधि में यह भी देखा कि संसार के लोग माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। वेद व्यास जी ने यह निश्चय कर लिया कि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। संसार के लोग जब तक अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक अनर्थ उपशम, तब तक उनके जीवन से अनर्थ या दुख जा नहीं सकते। तो माया से मुक्त होने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। वेदव्यास जी अपने ध्यान में देख रहे हैं, समाधि में देख रहे हैं और वेदव्यास जी सोचे कि संसार के लोगों को भक्ति कराने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि भक्ति का अर्थ हमारे आचार्यों ने दिया है नवदा भक्ति, जिसमें सर्वप्रथम भक्ति है श्रवण करना। तो संसार के लोगों को भक्ति देने के लिए वेद व्यास जी लोकस्या जानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिताम। वेद व्यास जी ने यह सोचा कि अब मुझे सात्वत संहिता भागवत की रचना करनी होगी और वेद व्यास जी समाधि में बैठे हैं और समाधि में ही भागवत के श्लोक वेद व्यास जी को हृदय में स्फुरित हो रहे हैं और वेदव्यास जी ने समाधि में बैठकर भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। वास्तव में आचार्य गण कहते हैं ये भागवत और कुछ नहीं श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी की समाधि की भाषा है। वेदव्यास जी समाधि में बैठकर जिस भगवान का दर्शन किए, जिस भगवान का चिंतन किए, जिस जिस भगवान की लीला को देखे वो अपने भागवत में लिखे। वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना कर दी, जिस भागवत में 335 अध्याय, 1270 उवाच, शुक उवाच, ये उवाच, वो उवाच, 1270 उवाच, 18,000 श्लोक और 5,76,000 शब्द, इस प्रकार से वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा वेदव्यास जी भागवत ग्रंथ की रचना किए। वेदव्यास जी के जीवन की अंतिम कमाई है यह भागवत ग्रंथ, और वास्तव में यह भागवत ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, सर्वश्रेष्ठ पुराण है। यदि आप थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो समझ सकते हो कि यह भागवत की कितनी महिमा है। यह भागवत वेदव्यास जी ने अपने जीवन की अंतिम कमाई के रूप में लिखा है। वैसे तो वेदव्यास जी ने बहुत बहुत पुराण लिखे, बहुत शास्त्र लिखे, परंतु भागवत अंत में वेदव्यास जी के जीवन की अंतिम चीज थी श्रीमद् भागवतम। और शास्त्र का, व्याकरण का एक सिद्धांत है कि पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। इस संसार में कई लोग अलग अलग पुराण को पढ़ते हैं और अलग अलग पुराण को पढ़कर अलग अलग नतीजे पर पहुंचते हैं, परंतु वेदव्यास जी ने, नारद मुनि ने सत्य कहा है, ये जितने भी पुराण है ये सब भ्रमित करने वाले हैं। किम श्रुते बहुर्भिः शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे, जितने जितने पुराण भागवत के अलावा जितने भी पुराण है ये सभी पुराण मन को भ्रमित करने वाले हैं। परंतु भागवत मन को शांत करने वाला है, क्योंकि भागवत में वेदव्यास जी बिल्कुल सत्य का निरूपण किए। और वैसे भी यह शास्त्र का और व्याकरण का सिद्धांत है कि अंत में जो चीज कही जाती है वही सत्य होती है। जैसे कि मैं आपको एक दृष्टांत दूं, मैं यहां पर बैठकर कहूं कि हमारे यह समीर बहुत बुरा लड़का है, ये समीर बहुत खराब है, इसका आचरण बहुत गलत है, इसके साथ कभी बैठना मत, इसके साथ कभी बात मत करना, ये बहुत खराब है, बहुत गलत है, आधा घंटा में उसकी बुराई करूं और फिर अंत में कह दूं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। बताइए आप इसमें से क्या सार ग्रहण करेंगे? बताइए इसमें सत्य चीज क्या है, समीर बुरा है या अच्छा है? क्यों? क्योंकि मैंने यह अंत में कहा। भले मैंने आगे बहुत बहुत आधे घंटे तक उनकी बुराई की, परंतु केवल अंत में एक लाइन कह दिया, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तो वह एक लाइन ये सभी चीज का सार बन गया। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी ने बहुत बहुत ग्रंथ लिखे, वेद शास्त्र पुराण लिखे, परंतु वेदव्यास जी ने अंत में श्रीमद् भागवतम लिखा, जिसमें सभी वेद पुराणों का सार है। और इतना सुनकर, इतना जानकर भी कोई व्यक्ति ये ऐसा कहे कि नहीं वो पुराण में तो ऐसा लिखा है, तो वे तो वैसा ही होगा जैसे कोई तर्क करे, आप तो कह रहे थे समीर बहुत बुरा है। लेकिन अरे मूर्ख, मैंने अंत में कहा कि मैं मजाक कर रहा था। वैसे वेदव्यास जी ने भले अलग अलग पुराणों में कहा कि ये भगवान है, वो भगवान है, ये देवी ये है, वो है, परंतु अंत में वेदव्यास जी ने कहा कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह अंतिम निर्णय वेदव्यास जी का, कृष्ण ही भगवान। तो इस प्रकार वेदव्यास जी ने परम सात्वत संहिता का निर्माण किया। जिस सात्वत संहिता को पढ़कर यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, जिस भागवत को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न कर सकते हैं और संसार के शोक मोह और भय से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा भागवत का निर्माण वेदव्यास जी ने किया। परंतु वेदव्यास जी जब तक ये भागवत निर्माण करे तब तक तो बेचारे बूढ़े हो चुके थे। अब वेदव्यास जी को यह बात आई कि मैंने भागवत तो लिख दिया परंतु इस भागवत का प्रचार कौन करे, क्योंकि जीवन बीत गया यह शास्त्र लिखने में, बूढ़े हो गए बेचारे, अब इस भागवत का प्रचार करने वाला कोई चाहिए। वेदव्यास जी के हृदय में इच्छा हुई कि यदि एक ऐसा पुत्र हो जाता, एक ऐसा पुत्र मिल जाता जिसे मैं ये भागवत पढ़ाऊं और भागवत पढ़कर वह संसार में प्रचार करे। भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं, इसलिए आइए वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की कथा कुछ देर श्रवण करें। सुखदेव गोस्वामी और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। जब भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को कुछ मैसेज भेजना होता है, राधा रानी को जब कृष्ण को कुछ मैसेज देना होता है तो वहां तो मोबाइल नहीं चलता है, वहां तो इंटरनेट भी नहीं है, तो राधा रानी एक तोता रखती है और वो तोते को के कान में जो भी कृष्ण को कहना होता है वह कह देती हैं और वो तोता कृष्ण के पास जाकर सब कुछ बता देता है और कृष्ण उस तोते को कहते हैं, वो तोता राधा रानी को सब कुछ बता देता है। तो वही राधा रानी का शुक, वही राधा रानी का तोते को इच्छा हुई कि भौतिक जगत में क्या चल रहा है जाकर देखे, तो आए यहां पर। और इसके साथ हमारे परम वैष्णव की कथा भी जुड़ी हुई है। जैसे निम्न गानाम यथा गंगा, इस संसार में अनेक अनेक नदियां हैं परंतु सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है। संसार में कई सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवता है, देवानाम अच्युतो यथा, परंतु सर्वश्रेष्ठ भगवान अच्युत है। जैसे पुराण तो बहुत हैं परंतु सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है, वैसे ही संसार में वैष्णव तो बहुत हैं परंतु वैष्णव में शिरमोर सभी वैष्णव में श्रेष्ठ यदि कोई है तो है वैष्णवा नाम यथाशंभु भगवान शिव। शिव जी जिसके लिए आया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी पार्वती के साथ विवाह किए हैं, बहुत सुंदर कथा है। पार्वती के साथ नया नया विवाह करके घर पर लाए थे, बहुत सुंदर गृहस्थी जीवन बिता रहे थे। एक दिन की बात, कुछ काम के लिए शिव जी बाहर गए होंगे और उसी वक्त अपनी वीणा पर नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि शिव जी के घर पर आ गए। शिव जी घर पर नहीं थे, देवी पार्वती घर पर थी। नारद मुनि ने पार्वती को कहा कि देवी गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है, ठीक तो है ना सब? पार्वती ने कहा हाँ प्रभु सब कुछ ठीक है। नारद मुनि ने कहा नहीं, कुछ दोनों के बीच में कोई दुराव तो नहीं है, कोई पर्दा तो नहीं है? नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दोनों एक दूसरे को सभी बात, हृदय की सभी बात बताते हो? पार्वती जी ने कहा हाँ मैं मेरे पति देव से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे पति भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं और दोनों एक दूसरे से हम सभी बातचीत करते हैं, किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कोई भी सीक्रेट बात नहीं रखते। नारद मुनि ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है ऐसी बात है तो बताओ कि शिवजी के गले में जो मुंड माल है, आप जानते हो शिवजी अपने गले में मुंड माला पहनते हैं। मुंड माला अर्थात व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके जो अवशेष बचते हैं तो ऊपर की जो खोपड़ी होती है इस खोपड़ी की माला शिवजी पहनते हैं। अब शिवजी का वेश भी बहुत अद्भुत है। शिवजी हम लोग पाउडर लगाते हैं, शिवजी शमशान की भस्म लगाते हैं। आज तक कभी अपने लिए घर नहीं बनाए, कभी कोई अलंकार नहीं पहने, कभी बाल नहीं बनाए, जटा बढ़ा कर बैठते हैं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा तो बताओ तुम्हारे पति देव गले में जो मुंड माला पहनते हैं वह किसकी पहनते हैं, वह क्या है? तो पार्वती जी ने कहा कि ये तो मैं जानती नहीं हूं, ऐसा तो मैंने कभी पूछा नहीं, और मैंने तो पूछा नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं बताया। नारद ने कहा नारायण नारायण करते चले गए। अब आने दो पति देव को घर पर। शिव जी शाम को जैसे हम ऑफिस से घर पर जाते हैं वैसे शिव जी शाम को घर पर आए। घर पर आकर देखा तो देवी जी का मूड बहुत खराब था। वो पता चल जाता है, मूड जब खराब होता है तो वेश ठीक नहीं होता है, साड़ी झुनी पहनी होती है, श्रृंगार नहीं होता है। शिव जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। शिव जी ने आकर तुरंत पूछा देवी यहां पर कोई आया तो नहीं था ना? पार्वती जी ने कहा हाँ नारद जी आए थे। शिव जी समझ गए तो ठीक है, समझ गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं आपसे बहुत दुखी हूं। क्यों, क्या हुआ? आज हमारे विवाह हुए इतना दिन हो गया परंतु आप अपने गले में यह चेन कहां से ली मुझे नहीं बताए। हमारी भाषा में पार्वती जी ने तो पूछा होगा कि ये मुंड माला किसकी है। विवाह के इतने दिन हो गए आज तक मुझे नहीं बताया, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम्हें भोजन खाना नहीं खिलाऊंगी। शिव जी ने कहा देवी देवी तुम जानती नहीं हो, देवी वास्तव में मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, भगवान के बाद यदि किसी से प्रेम करता हूं तो देवी तुम हो। कभी कभी कहना पड़ता है यदि प्रेम न भी हो तुमसे प्रेम करता हूं देवी। शिवजी तो वास्तव में करते थे। शिवजी ने कहा देवी तुम्हें देखना है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। देवी जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है और तुम्हारी मृत्यु के बाद में मैं तुम्हारे शरीर से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी मृत्यु होने के बाद तुम्हारी मुंड में मेरे गले में धारण करके रखता हूं। देवी मेरे गले में जितना मुंड है, मेरे गले में जितनी मुंडी है उतना जन्म लेकर तुम मर चुकी हो, ये तुम्हारा मुख है तुम्हारी मुंडी है। पार्वती जी तो धन्य हो गई, चरणों में गिर गई। परंतु स्त्रियों में कभी कभी बहुत बुद्धि आ जाती है। अब क्रोध बिल्कुल डाउन हो गया और कहा कि प्रभु आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, प्रभु आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। हां देवी इतना प्रेम करता हूं। तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों कि मुझे इतनी बार मरना पड़ा और तुम तो एक के एक ही रहे? आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप एक ही रहे और मुझे इतनी बार मरना पड़ा? शिव जी ने कहा कि देवी ये इसलिए क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं और अमर कथा के कारण मैं अमर हूं और तुम मृत हो। अब तो पार्वती जी बिल्कुल शिव जी को मनाने के लिए पड़ गई। तो पतिदेव तो वास्तव में आप यदि मुझे प्रेम करते हो तो मुझे भी बता दो, हम दोनों जिएंगे, आपको ये भार ढोने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने कहा देवी बताऊंगा फिर कभी। पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे प्रेम करते हो कि नहीं? शिव जी ने कहा हाँ। तो पतिदेव बताओ मुझे अमर कथा, मैं भी जानना चाहती हूं, मैं भी अमर हो जाऊंगी, तुम भी अमर, हमारा प्रेम भी अमर रहेगा। शिव जी ने कहा देखो देवी यह अमर कथा सुनने के लिए कुछ देश काल पात्र के अनुसार यह कथा सुनाई जाती है। पार्वती जी ने हठ पकड़ी, मुझे सुनना है सुनना है। शिव जी ने कहा समय आने पर मैं सुना दूंगा। ठीक है, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, प्रतिदिन पार्वती याद कराती थी भोजन देते समय, प्रभु याद है वो अमर कथा सुनाना है आपको। कभी भी शाम को घर पर आते थे प्रभु वो अमर कथा। शिव जी तंग आ गए और सोचे कि चलो इसको सुनाना ही पड़ेगा। तो एक बार शिव जी पार्वती जी को लेकर अमरनाथ में गए और अमरनाथ में जाकर शिव जी ने सोचा कि पार्वती के अलावा यदि कोई अमर कथा सुन लेगा तो अमर हो जाएगा। और यदि वह अमर हो गया तो भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति से बिल्कुल विरुद्ध बात हो जाएगी, मैं भगवान के नजर में दोषी हो जाऊंगा। इसलिए उस अमरनाथ से सभी जीवों को भगा दिया शिव जी ने। कैसे भगाया? शिव जी ने अपना डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया जिस डमरू के नाच से अमरनाथ से छोटे बड़े सभी जीव भाग गए, कोई नहीं रहा, केवल शिव जी और पार्वती जी एक पेड़ के नीचे बैठे। लेकिन उसमें जब शिव जी ने डमरू बजाया तब एक शुक ने अंडा दिया था, तो अंडा देने वाला शुक तो चला गया परंतु वो अंडा उसी पेड़ के ऊपर रह गया। और जैसे ही यहां पर शिव जी अमर कथा सुनाना प्रारंभ करे तुरंत उस अंडे से वह शुक का जन्म हो गया। यहां पर शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि देखो देवी, अमर कथा सुनना है तो एक चीज ध्यान में रखनी होगी। बोलो पतिदेव, क्या ध्यान में रखना है? नींद नहीं आनी चाहिए, जैसे यहां से कुछ लोगों को आ रही है। यदि नींद आ गई तो अमर कथा पूरा पूरा लाभ नहीं करेगी। और देवी, तुम्हारा तो स्वभाव है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में गए थे भगवान शिव, वहां पर भी सती जी सो गई थी, भगवान को पहचान नहीं पाई, भगवान रामचंद्र का अपराध किया और दक्ष के यज्ञ में जलना पड़ा। इसलिए देवी ध्यान रखो, अपने नींद को वश में करो। वास्तव में जब अमर कथा भागवत कथा में कोई अंतर नहीं है, चाहे अमर कथा हो या भागवत कथा हो, जब भी हम ये सुनते हैं तब हमारी नींद के ऊपर वश होना चाहिए। यदि नींद वश में नहीं है तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। नींद आती है क्योंकि यह नींद साधारण शक्ति नहीं है, यह नींद कुंभकर्ण की बहन है। कुंभकर्ण जानते हैं आप, 6 महीना सोता था और 6 महीने के बाद ढोल नगाड़े पखावज बड़े बड़े ढोल लेकर जब बजाए जाते थे तब जाकर एक बार उठता था और उठकर कितना कितना मांस मदिरा खाकर फिर से सो जाता। कुंभकर्ण की बहन है और इतनी शक्ति है, कितना भी बड़ा रथी महारथी अति रथी क्यों न हो, हिटलर भी क्यों न हो, यदि नींद आ गई तो उसे भी गिरा देती, बिस्तर में सुला देती। नींद बहुत शक्तिशाली है। तो देखिए हमारे कुंडल कृष्ण प्रभु कहते हैं कि आप नींद के वश में होकर भागवत रत्न को मिस मत कीजिए, नहीं तो भागवत रत्न अपने हाथ से छूट जाएगा यदि नींद आ गई तो। एक रत्न है, रत्न बांटा जा रहा है, यदि नींद आ गई जबकि आ गई तो रत्न हाथ में नहीं आएगा। तो इस रत्न को सावधानी से सुनना चाहिए। देवी सोना मत, कहा जी मैं सोऊंगी नहीं। तब शिव जी ने दूसरी बात कही कि जब मैं भागवत अमर कथा करता हूं तो मैं भाव में आ जाता हूं और भाव विभोर होकर आंखें बंद करके अमर कथा शुरू कर देता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम सो रही हो या बैठी हो जग रही हो? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं हुंकार करूंगी, आप कथा सुनाते रहो, मैं हां 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 मैं करती रहूंगी। शिव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। शिव जी ने प्रारंभ किया जन्माधस्य इत्यादि पूरा अमर कथा पार्वती जी को सुनाते गए और पार्वती जी हम्म करती गई। शिव जी आंख बंद करके अमर कथा सुनाना प्रारंभ किए और बहुत बहुत समय के बाद शिव जी ने जब अमर कथा समाप्त की, समाप्त करके जैसे शिव जी की आंख खुली, आंख खुलकर देखा तो पार्वती सो गई थी। प्रश्न यह उठा कि पार्वती यदि सो रही है तो हुंकार कौन दे रहा है? शिव जी आजू बाजू में ढूंढने लगे, ये कौन है, पार्वती के बिना हुंकार कौन, ये कौन सुन रहा है? तब तक तो शिव जी की नजर उस पेड़ के ऊपर, उस तोते के ऊपर, उस शुक के ऊपर गई और जैसे ही शिव जी ने देखा कि ये शुक हुंकार दे रहा था तुरंत शिव जी क्रोधित हो गए, अपने हाथ में त्रिशूल लेकर उस शुक के पीछे भागे। शुक तो अमर कथा सुन लिया था, वह तो वहां से भागा, शुक आगे आगे, शिव जी अपना त्रिशूल लेकर पीछे पीछे भाग रहे हैं। और वह शुक अमरनाथ से उड़ते 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 बद्रीनाथ में आया। अमरनाथ बद्रीनाथ ये सब उत्तर भारत में उत्तरांचल में है। तो वह आगे आगे शूक पीछे पीछे शिवजी अपने त्रिशूल के साथ दौड़ रहे थे और उड़ते उड़ते बद्रीनाथ में वह शूक आया और उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी अरणी जमहाई ले रही थी, मुंह खुला था और वह छोटा सा शूक मुख के द्वारा अरणी के गर्भ में से उनके हृदय में चला गया और शिवजी त्रिशूल लेकर खड़े रह गए अरणी के सामने। अभी मार दू उसे, शिवजी ने बहुत प्रयास किया लेकिन उस वक्त वहां पर वेद व्यास जी प्रकट हुए। वेद व्यास जी आए और कहने लगे, भोलेनाथ क्या कर रहे हो तुम स्वयं अमरनाथ की महिमा गांव में सुनाते फिरते हो कि जो अमर कथा सुन लेता है उसे कोई नहीं मार सकता है, तो भोलेनाथ इसने अमर कथा सुन ली है, तुम नहीं शिवजी, भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा भी आ जाए, उनके पिता भी आ जाए, भागवत सुन लिया है इसने, अमर कथा सुन ली है, इसे कोई नहीं मार सकता है शिवजी। शिवजी हाथ जोड़े और वहां से वापस चल दिए और यहां पर वह शूक वेद व्यास जी की पत्नी अरणी के घर में पलने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह, धीरे धीरे समय बीतते कोई देर नहीं लगती है, समय बीतता गया, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल बीत गए, परंतु उस अरणी के घर से वह शूक सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आ रहे थे। 10 साल हुआ, 15 साल बीत गए, 15 साल के बाद भी वो बालक बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। वेद व्यास जी चिंतित होने लगे कि अब क्या होगा। अरणी दुखी होने लगी क्योंकि 15 साल से बालक गर्भ में है। वेद व्यास जी बहुत बहुत प्रयास किए और अंत में वेद व्यास जी अपने अरणी के घर में रहने वाले पुत्र को बोले कि बेटा क्यों बाहर नहीं आ रहे हो, बाहर आओ, तुम्हारी मां को कितना दर्द हो रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी ने उस अरणी के गर्भ में वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से उत्तर दिया, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि बाहर आते ही मैं माया में फंस जाऊंगा। देखिए जिसने अमर कथा सुनी है, सुखदेव गोस्वामी जो अमर कथा जानने वाले हैं, वह भी कितना माया से सतर्क रहते हैं। वास्तव में जो नर सतर्क रहता है वह कभी किसी विपत्ति में नहीं फंसता है और सुखदेव गोस्वामी को माया स्पर्श तक नहीं कर सकती है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पिताजी यदि मैं बाहर आऊंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, मैं बाहर नहीं आने वाला। वेद व्यास जी ने बहुत बहुत समझाया परंतु ये बाहर नहीं आए। अंत में वेद व्यास जी ने सोचा कि ये जिसकी माया है उस भगवान ही यदि इनका समर्थन करे तो ये बाहर आएगा। वेद व्यास जी ने भगवान को बुलाया, भगवान साक्षात आकर कहे कि ये माया मेरी शक्ति है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरक्तया, सुखदेव ये माया मेरी है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि संसार की माया तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। सामर्थ्य किया भगवान ने और भगवान का जब समर्थन, भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया कि सुखदेव कभी माया में नहीं फंसोगे, तब जाकर 16 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी अपनी मां अरणी के घर से प्रकट हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रकट हुए परंतु प्रकट होते ही, क्योंकि 16 साल के तो वे थे ही, प्रकट होते ही सुखदेव गोस्वामी अपना घर बार छोड़कर भागने लगे। माता कहने लगी, पुत्र कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। पिता वेद व्यास जी, हा पुत्र कहां भाग रहे हो। सुखदेव गोस्वामी किसी के और नहीं देखे और बिना कपड़ा पहने नग्न अवस्था में सुखदेव गोस्वामी वहां से भागे। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी को बाहरी माया का कोई ज्ञान नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यदि घर पर रहूंगा तो फजीहत में फंस जाऊंगा। तुरंत घर छोड़कर सुखदेव गोस्वामी भागे। आगे आगे सुखदेव गोस्वामी, पीछे पीछे वेद व्यास जी और भागकर सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए। जंगल में जाकर वेद व्यास जी ने बहुत बहुत ढूंढा सुखदेव गोस्वामी को, परंतु कहीं मिले नहीं। अंत में वृक्षों ने जवाब दिया। वेदव्यास जी निराश होकर अपने घर वापस आए और वापस आकर सोचने लगे क्या किया जाए। सुखदेव को इतनी लंबी उम्र के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ था, वह भी घर छोड़कर चला गया। यदि वह मुझे मिल जाए तो उसे भागवत का ज्ञान दूं और वह भागवत का प्रचार प्रसार करे। सुखदेव गोस्वामी वन में चले गए और जंगल में जाकर सुध गोस्वामी कहते हैं कि वह ब्रह्म समाधि में बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसी समाधि उस जंगल में जाकर लगाई जहां पर ब्रह्मानंद का आनंद मिल रहा था। ब्रह्मानंद में लीन हो गए, ब्रह्म समाधि में बैठे। और यहां पर वेदव्यास ने सोचा कि कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह भागवत का श्लोक सुनता है, भगवान का गुण, भगवान की गाथा और भगवान की करुणा का यदि वह वर्णन सुनेगा तो निश्चित मेरे पास आएगा। वेदव्यास जी ने अपने अमुक शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक पढ़ा दिए और वह श्लोकों को लेकर वेदव्यास जी के शिष्य जंगल में गए। और जंगल में जाकर वेदव्यास जी के शिष्य भगवान के रूप का, भगवान की गुण का गान करने लगे। कैसा गुण है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगासया पा यतपि असाधवी लेभे गतिं धा त्रियुचितां ततो व्यं कं वा दयालु शरण व्रजेम। पुतना जो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में आई थी, अपने स्तन पर कालकूट नामक जहर लगाकर आई थी, परंतु ऐसी पुतना को भी भगवान ने अपनी मां बना दिया, धात्री की गति दे दी। अब बताओ, जो व्यक्ति किसी को मारने के, खत्म करने के लिए आया है, उस व्यक्ति को अपना मां बना लेना, इससे बड़ा कृपालु, इससे बड़ा दयालु इस संसार में कौन हो सकता है? ऐसे भगवान की कृपा गुण का वर्णन करने लगे, भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। और सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म समाधि में बैठे थे, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर रहे थे, भगवान का गुण सुनकर, भगवान की लीला को सुनकर सुखदेव गोस्वामी की ब्रह्म समाधि टूट गई और तुरंत खड़े हुए और खड़े होकर भगवान के गुण सुनकर विह्वल होने लगे। और जो लोग ये श्लोक गा रहे थे उनके पास दौड़कर गए और दौड़ के जाकर सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, और आप श्लोक गाओ और सुनाओ भगवान का गुण। तब वे कहने लगे, हम तो बहुत कम श्लोक जानते हैं, परंतु हमारे गुरुजी बहुत श्लोकों को जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, तो आप मुझे उसके पास ले जा सकते हो? तो शिष्य तो इसी के लिए आए थे। सुखदेव गोस्वामी को लेकर घर पर आए तो देखा तो पिताजी ही पढ़ाए थे। चलो अच्छा है, घर के ही गुरु मिल गए। सुखदेव गोस्वामी घर पे आए, वेदव्यास जी प्रसन्न हुए और सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का पाठ कराया। वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया और सुनाकर सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को आत्मसात कर लिया। तो सुखदेव गोस्वामी के पास इस प्रकार से यह भागवत ग्रंथ आया। और यह भागवत ग्रंथ वास्तव में देखा जाए, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में भागवत कथा सुननी है, तो किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब तक उस विषय वस्तु का महात्म्य न जाना जाए, जब तक किसी विषय वस्तु की महिमा न जानी जाए, तब तक उस विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा नहीं होती। तो इसके लिए भागवत की तो अनंत महिमा है, लेकिन कुछ महिमा, जैसे वेद व्यास जी अपने भागवत में प्रारंभ में ही लिखते हैं कि यह भागवत कैसा ग्रंथ है, कहते निगम कल्प तरो, निगम कल्प तरो, जितने भी वेद और शास्त्र हैं, ये सभी वेद और शास्त्र का यह पका हुआ फल है। और कैसा फल है? गलितम फलम। आप कोई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम को फल कहा गया है और वह भी पका हुआ फल, परंतु जैसे ही हम हमारे मन में फल नामक वस्तु सोचते हैं तो हम यह भी सोचते होंगे फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। तो कुछ लोग भागवत के ऊपर आरोपण करते हैं कि वेद व्यास जी ने दृष्टांत दिया है कि भागवत पके हुए फल के समान है, परंतु फल में जैसे गुठली और छिलका होता है, त्याज्य वस्तु होती है, वैसे भागवत में भी कुछ गुठली और छिलका है, कुछ चीज त्याज्य है। इसलिए वेद व्यास जी बहुत सतर्क है, कहते हैं कि नहीं, निगम कल्पतर और गलितम फलम, ये ऐसा फल है जिसमें न तो गुठली है, जिसमें न तो छिलका है, जैसे बना बनाया जूस को ही जमा दिया गया है, ऐसा यह फल है। निगम कल्पतर और गलितम फलम। और फल तो इस संसार में होता है, लेकिन आप किसी लोगों को अनुभव होगा कि किसी वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए हैं और उस फल को यदि तोता स्पर्श कर ले, कोई तोता उस फल को स्पर्श करे तो वह फल और भी मीठा हो जाता है। और इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस फल को तोता खाया है वह फल मीठा ही होता है। गांव में रहने वाले जानते होंगे। तो वैसे तो यह भागवत रूपी फल परम मधुर है, परंतु यह सुख रूपी सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब यह स्पर्श हुआ, सुख मुखाद्रय अमृत द्रव संयुतम, तब तो वे मधुराति मधुर हो गए। भागवत मधुर तो था ही, परंतु जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तब तो मधुराति मधुर हो गए। और कितना मधुर, ये साधारण फल न समझो, साधारण जूस न समझो, ये साक्षात अमृत है। अमृत द्रव, ये अमृत का द्रव है, जैसे अमृत का अर्थ होता है नमृत। अमृत की दो विशेषता है, एक तो अमृत जो व्यक्ति पी लेता है वह व्यक्ति निरोग हो जाता है, और दूसरी विशेषता है कि अमृत जो है टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। स्वर्ग में जो अमृत है, यदि अब दो प्रकार का अमृत होता है, एक स्वर्ग का अमृत और एक भागवत कथा अमृत। स्वर्ग का जो अमृत है वह अमृत पीकर व्यक्ति अपनी उम्र बढ़ा सकता है, निरोग हो सकता है, परंतु मृत्यु से नहीं बच सकता है। लेकिन यदि कोई श्रीमद् भागवत कथा सुनता है तो भागवत कथा एक ऐसा अमृत है जो मृत्यु से बचा सकता है। सक्सेसफुल डेथ आता रहेगा। मृत्यु से यदि बचना है, मृत्यु को संवारना है, तो श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करना होगा। श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करके अपनी मृत्यु को संवारा महाराज परीक्षित ने। बड़े बड़े संतों ने, महाजनों ने ये भागवत कथा अमृत का पान करके अपनी मृत्यु को सफल बनाया। अमृत है, और दोनों विशेषताएं, श्रुत मधुर भी है और हृदय को पवित्र करने वाला है। पिबत भागवतम रसमालयम। तो यदि यह अमृत मिला है, यह जूस मिला है, इसमें किसी भी चीज की चबाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, केवल इसे पीना है। भागवत कथा अमृत को पीने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में और जितने भी साधन है, ध्यान, तपस्या, दान, ये सब करने में बहुत कष्ट है, बहुत परिश्रम है। जेब में से किसी को 10 रुपया देना 10 बार सोचते हैं, परंतु भागवत कथा अमृत का पान करना, इसमें कौन सा बड़ा कष्ट है। आना है, बैठना है, एसी के बीच में बैठना है, केवल सुनना है, और सुनने के बाद प्रसाद खाना है, कोई कष्ट नहीं है। इसलिए कहते हैं इसमें किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं है। संसार की और जितनी वस्तु है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उसे तो चबाना भी पड़ता है। भागवत अमृत को चबाने की जरूरत नहीं है, केवल पीना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरण रति जो चहे, रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पुट का। भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना है और संसार के दुखों से मुक्त होना है तो भाव के साथ प्रेम से अपने कान रूपी द्वार में दोना भर भर के यह कथा डालते रहो। भरो श्रवण पुट कान। गोस्वामी जी की कविता बहुत सैद्धांतिक है। अब देखिए गोस्वामी जी ने कहा कि श्रवण पुट कान अपने दोने से कान में डालते रहो। अब कितना भी अच्छा अमृत हो, कितनी भी अच्छी खीर हो, माले अमृत तो किसने देखा नहीं है, परंतु हम खीर अवश्य खाते हैं। इस्कॉन की तो फेमस है, आज मिलेगी सबको। तो कितनी भी अच्छी खीर हो, व्यक्ति एक दोना खा सकता है, दो दोना खा सकता है, दस दोना खा सकता है, ज्यादा नहीं खा सकता। तो गोस्वामी जी भी समझ गए कि ये लोग दिन में एक घंटा या दो घंटा सुन सकते हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है आज एक घंटा सुनो तो कल भी एक घंटा, परसों एक घंटा, ऐसे सुनते रहिए। भरो श्रवण पुट कान। तो इस प्रकार से ये भागवत अमृत के समान है, अमृत द्रव है, और इसे जीवन भर जब तक मृत्यु न आए तब तक इस भागवत रस को पीते रहना चाहिए। आगे वेदव्यास जी कहते हैं यदि कोई यह भागवत सुन लेता है, यह भागवत सुनने से भगवान के प्रति प्रेम होता ही है, परंतु भागवत की इतनी महिमा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भागवत को सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भागवत सुनने की अपने मन में जिज्ञासा कर ले, ऐसा सोचे कि आज शाम को 7 बजे भागवत सुनने के लिए मेगा पार्टी हॉल में जाना है, 10 दिन पहले यदि कोई सोचे कि मुझे इस दिन 21 तारीख को 7 बजे जाना है, अभी व्यक्ति गया नहीं है, परंतु कहते हैं कि विचार करने मात्र से सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुश्रुषु भी तत्क्षणात्, जिस समय से व्यक्ति सोचता है कि मुझे भागवत कथा सुनना है उस समय से ही भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं, बंदी हो जाते, उनके हृदय में आ जाते हैं। सुनने इच्छा करने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति सुन ले और श्रद्धा से सुन ले तब तो भगवान उस व्यक्ति को अपने हृदय में बंद कर देते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मई ते, मैं मेरे भक्तों के हृदय में तो रहता ही हूं, परंतु भक्ति करने वाले को मैं मेरे हृदय में बंद करके रखता हूं, कैद करके। और कैसे कैद करके रखता हूं? जैसे लोभी लोग अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखते हैं। असत जन्म में उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जैसे लोभी, आपने देखा होगा डायमंड वाले बहुत सारे हैं यहां पर, शाम को जब लॉकर में अपना डायमंड रखने जाते हैं तो 25 बार खींचते हैं, कुछ लोग लटक जाते हैं वहां पर, हमें लगता है तोड़कर ही बाहर निकलेंगे। जैसे लोभी व्यक्ति अपने धन को बंद करके रखता है तिजोरी में, वैसे भगवान अपने भक्त को हृदय में बंद करके रखते हैं। भागवत सुनने वाला भगवान के हृदय में रहता है, भागवत की अनंत महिमा है। ये भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत को उभयात्मक ग्रंथ कहा गया है। उभय माने दो, श्रीमद् भागवत की दो प्रकार से सेवा की जा सकती है। एक तो इस भागवत को यदि कोई व्यक्ति सुने, सुनकर भागवत की सेवा कर सकते हैं, और दूसरा इस भागवत की आरती करके, भोग लगा करके, पूजा करके, इसकी प्रदक्षिणा करके हम इस भागवत की पूजा सेवा कर सकते हैं। भागवत दो प्रकार से सेव्य है, एक तो पूजा इत्यादि के द्वारा और एक श्रवण के द्वारा। तो प्रश्न होता होगा कि भागवत सुनना ये तो अब तक ठीक है, परंतु भागवत को भोग लगाना, आरती करना, उसकी प्रदक्षिणा करना ऐसा क्यों कहा गया है? तो भक्तों, ये भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, ये भागवत केवल कागज के पत्ते नहीं है, ये भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत साक्षात भगवान का अंग है, ये भागवत के 11वें स्कंद में प्रसिद्ध हो गया। इतिहास साक्षी है, भगवान जब अपने देह को अपने धाम में जब जा रहे थे प्रभात क्षेत्र में, तब उद्धव जी के देखते देखते भगवान इस भागवत में प्रवेश किए। भागवत साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान की वांगमय मूर्ति है, इसलिए कहते हैं तेने वांगमयो मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे दर्शनात् सेवनात् श्रवणात् पठ पाठात् पाप मोचिनी। भागवत भगवान की भगवान का वांगमय स्वरूप है, यदि कोई भागवत का दर्शन करे, पठन करे, पाठ करे या श्रवण करे तो उसका सब समस्त पाप जलकर भस्म हो जाता है। और भागवत के अंग, भगवान के अंग ही श्रीमद् भागवतम है। एक जगह बहुत सुंदर कहा गया है, पादो यदि यो प्रथमत्व द्वितीय, श्रीमद् भागवत के प्रथम और द्वितीय, श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का चरण है। तृतीय तुरियो कथितो यदूरु, भागवत का तीसरा और चौथा स्कंद कटी के आगे वाला भाग है। नाभिस्तता पंचम एव षष्ठो, भागवत का पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है और भागवत का छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। भुजा तरंगो युगल तथान्तो, भागवत का सातवां और आठवां स्कंद भगवान की बाहु है। कंठस्तु रामम नवमो यदियो, और श्रीमद् भागवतम का नवम स्कंद भगवान का कंठ है। मुखारविंदम दृश्यम प्रफुल्लम, भगवान का सुंदर प्रफुल्ल सुंदर मुख श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद है। दसम स्कंद भगवान का मुख है। एकादशस्य ललाट पट्टम, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद भगवान का कपाल है, भाल है। और शिरो तु द्वादश एव माति, और भागवत का 12वां स्कंद भगवान का तिलक मस्तक है। इस प्रकार से त्वम आदि देवम करुणा निदानम, यह भागवत साधारण ग्रंथ नहीं, भगवान की साक्षात वांग्मय मूर्ति है, साक्षात भगवान ही भागवत। भागवत का अर्थ ही होता है भगवान का, भगवान के मुख से निकला हुआ। भागवत साक्षात भगवान है, श्रवण के द्वारा और पूजा के द्वारा इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति भागवत ग्रंथ सुने, यह अमृत देने वाला ग्रंथ है, यदि कोई यह भागवत सुनता है तो वह जीवन से अमृत हो जाता है, कभी मरता नहीं। तो ऐसे भागवत को सभी लोगों को सुनना चाहिए, परंतु सुनने में भी ध्यान रखना चाहिए। सुनने वालों की भी बहुत योग्यताएं होती हैं, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, भागवत में बहुत बहुत श्रोताओं का वर्णन दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं, परंतु खास करके तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक है श्रोता, दूसरा है सोता और तीसरा है श्रोता। श्रोता का अर्थ होता है कि वक्ता के मुख से श्रद्धा से भागवत कथा सुने और सुनकर अपने जीवन में उसे धारण करें, इसे श्रोता कहते हैं। परंतु जैसे भागवत कथा शुरू होती है और यहां पर श्रोता का सोना शुरू होता है, उसे सोता कहते हैं। और कुछ श्रोता वो ऐसे होते हैं जो भागवत के साथ कोई मतलब नहीं है, परंतु देखने के लिए आते हैं कि ये क्या बोल रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है, इतना ऊपर बैठा है, कितनी गलती करता है, बस केवल देखने के लिए आते हैं कि कितनी भूल है, कितनी मिस्टेक है और कितना यह गलत बोल रहा है। और अभी भी कुछ लोग बैठ कर सोचते होंगे, ये फोटो यहां नहीं, यहां रखा होता तो अच्छा था। कुछ ना कुछ मन में चल रहा होगा, इसे श्रोता कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रोताओं की भी बहुत बहुत श्रेणी है, परंतु वास्तव में हमें श्रोता बनना चाहिए, ध्यान से श्रद्धा के साथ भागवत का श्रवण करना चाहिए। और श्रद्धा के साथ भागवत का यदि श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से ये भागवत को हम समझ पाएंगे और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब ये भागवत ग्रंथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज केवल प्रारंभ करते हैं, कल से इसे हम स्पीड वेग देंगे। भागवत का प्रारंभ होता है जहां पर महाभारत का अंत होता है, वहां पर भागवत प्रारंभ होता है। महाभारत आप सब लोग जानते होंगे, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में एक भयावह विशाल युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, और महाभारत का यह वह युद्ध 19 दिन तक चला, और 19वें दिन यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरश्वतो वीर गतिम गतेषु वृको दरा विगदा विमर्शे भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत के उस 19वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी और दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि में 19वें दिन में गिरा, और फिर आगे चलकर पांडव विजय हुए। विजय होकर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था परीक्षित। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, परंतु हमें अजामिल कथा करनी है कल से। परीक्षित नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने माता के गर्भ में भगवान का दर्शन किया था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तब माँ उत्तरा भगवान के पास गई थी, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की और उस बालक ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। तो गर्भ से बाहर जब वह बालक निकला तो वही देख रहा था कि मैंने गर्भ में जिसका दर्शन किया वह कहां पर है। सब जगह पर कहीं भी जाए तो वही देखता था कि वह कहां पर है, क्योंकि जो भगवान का रूप देख लेता है बाद में उसे कुछ नहीं जचता है। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव। ये शास्त्रीय भाषा आप शायद न समझ पाओ, लेकिन हमारी भाषा में समझिए ये कामदेव क्या होता है। करोड़ों करोड़ों कामदेव छोड़िए, एक कामदेव क्या है, इस संसार में जितनी भी सुंदरता है उस सुंदरता में भी हम जिसे मानते हैं ऐश्वर्या राय या माधुरी दीक्षित या कोई भी हीरो हीरोइन, ये सभी सुंदरता को एकत्रित करो फिर भी एक कामदेव मोहित होने की बात दूर है, उसके सामने तक नहीं देखेगा। ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर मोहित मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे सुंदर है भगवान कृष्ण। आगे क्या बताऊं, हमारे ब्रज के संत बहुत सुंदर कहते हैं, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जितने भी गोप बाल सखा है ये सब कृष्ण को गाली देते हैं कि अरे सारे तू इतना सुंदर, कृष्ण को गाली देकर कहते हैं कृष्ण तू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, भगवान ने तुझे लड़का बनाया है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रख दिया है। भगवान कृष्ण की सुंदरता अद्भुत थी, जब वे घर से बाहर निकलते थे जितने भी लोग देखते थे सब लोग प्रतिमा की तरह फोटो की तरह खड़े रह जाते थे। भागवत के दशम स्कंद में वर्णन है भगवान श्री कृष्ण जब बंसरी बजाते तो गाय और बछड़े जो भोजन जो घास खाती थी बंसरी की आवाज जब सुनती थी तो वह न तो वह निगल सकती थी न उगल सकती थी, चित्रवत फोटो की थी। कृष्ण के सखा कहते हैं कृष्ण भगवान ने तुझे लड़का बनाया है तो इतने लोगों के नाक में, बछड़े को शांति नहीं लेने देता है, गोपियों के घर पे उत्पात करता है, लड़का बना है तो इतने इतने लोगों के नाक में दम करके रख दिया है, यदि तुझे लड़की बनाया होता तो लाखों लोग गला काट कर मर गए होते, कट जाते गला करोड़न के करोड़ों लोग तुझे प्राप्त करने में मर जाते। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है, और परीक्षित महाराज ने जब देखा हृदय में भगवान का दर्शन किया तो बस उसी को ढूंढ रहे थे, तो परत ईक्षण परीक्षण करते रहते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित महाराज आगे चलकर इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट बने, परीक्षित महाराज के जितने भी वंशज थे, पांडव इत्यादि, ये सब लोग अपना राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। अकेले परीक्षित महाराज हस्तिनापुर की गादी पर राज कर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परीक्षित महाराज जिस गादी के ऊपर बैठकर राज करते थे, उस गादी के नीचे इस संसार के, इस भूमंडल, इस पृथ्वी के सभी छोटे मोटे राजा। हमारे भारतवर्ष में आज भी दिल्ली की गादी पर जो राज करता था उस समय, उसके नीचे दुनिया के सब लोग होते थे। और आज से 5000 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया को भारत कहा जाता था, परंतु धीरे धीरे करके ये भारतवर्ष दुनिया के नक्शे में, दुनिया में एक छोटा सा नक्शा बनकर रह गया। पहले इस भूमंडल का नाम था अजनाभ। हमारे इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा हो गए, अजनाभ नाम था। परंतु भरत महाराज आए और इतना सुंदर शासन किया, तो उससे इस भूमंडल का नाम भारत हुआ। और भारत देश के राजा थे महाराज परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट थे और परम गुणशील, सभी प्रकार से सर्व गुण संपन्न थे। और ऐसा राज करते थे, ऐसा राज्य महाराज परीक्षित का था। इस संसार में दो ही राज्य हो गया, एक राम राज्य और एक परीक्षित राज्य। आज भी लोग यह राज्य की कामना करते हैं कि ऐसे राम राज्य और परीक्षित का राज्य जैसा है, वैसा आज भी यदि हो जाए। क्योंकि परीक्षित महाराज जहां पर राज करते थे, उनकी प्रजा में एक व्यक्ति भी दुखी नहीं था, किसी के घर पर बीमारी नहीं, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं, ताप नहीं, कुछ दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं व्यापा, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं, दुख नहीं। और इतना समृद्ध राज्य था कि कोई किसान यदि इंद्रदेव को कहे कि मेरे खेत में इतने समय में इतनी ही बारिश होनी चाहिए, तो उसके खेत में उतने समय में उतनी ही बारिश होती थी। आज के लोगों की तरह राह नहीं देखनी पड़ती थी, इंद्र देवता उसके ही खेत में उतना ही बारिश पहुंचाते थे, इतना समृद्ध था। समुद्र रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते थे, केवल लेकर उसे पहनना था। इस प्रकार से कोई दुखी नहीं, सब लोग प्रसन्न। वास्तव में यदि राजा धर्मात्मा हो तो पूरी प्रजा सुखी रह सकती है। आज इस संसार के सब लोग दुखी हैं, इसका कारण यही है, यही है कि इस देश के राजा बिगड़ेल हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि इस देश में शांति लाना चाहते हो, तो जितने भी नेता है उसके गले में कंठी डालो और सबके हाथ में माला झोली पकड़ाओ। जब तक ये नेता और ये शासक प्रजा का पालन करने वाले भक्त नहीं बनेंगे, तब तक संसार में शांति नहीं आ सकती। पर क्या बताएं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज धर्म का पालन करने वाले धर्म रक्षक नेता राजा ही आज अधर्म कर रहे हैं। चाहिए कि प्राणियों की रक्षा करे, मनुष्य की रक्षा करे, परंतु आज के नेता ही गाय को मारने के लिए कतलखाना खाना खोलने के लिए लाइसेंस देते हैं। बहुत कड़े शब्द में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक गाय का खून इस पृथ्वी पर गिरेगा, जब तक ये कत्ल खाने खुलेंगे, तब तक इस भारत वर्ष में शांति और राम राज्य नहीं आ सकता। यदि राम राज्य लाना चाहते हो, परीक्षित महाराज जैसा राज्य लाना चाहते हो, तो सबसे पहले राम को लाओ, भगवान को लाओ, भगवान के नाम का जप करो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो कितना भी विश्व शांति यज्ञ करो, कुछ भी करो, शांति नहीं आने वाली। परीक्षित महाराज का राज्य परम प्रसन्न, सभी ओर से समृद्ध था। तो परीक्षित महाराज बहुत सुंदर राज्य कर रहे थे और बहुत बहुत कथा है। परंतु एक समय की बात, महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए, अपने कई सारे सैनिकों के साथ गए, परंतु इतने गहरे वन में चले गए, इतने गहरे वन में गए, महाराज परीक्षित अकेले हो गए। क्योंकि सुबह से घर से निकले थे, कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए बहुत प्यास लगी। तो दोपहर को महाराज परीक्षित पानी पीने के लिए कुछ स्थान ढूंढने लगे, तो कहीं भी कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। अंत में दूर से महाराज परीक्षित को एक झोपड़ी दिखाई दी। महाराज परीक्षित जब वो झोपड़ी में पहुंचे तो उस झोपड़ी में एक साधु एक ऋषि ध्यान में बैठे थे। इस संसार में कोई साधारण व्यक्ति भी हमारे घर आता है तो हम उसे आसन और पानी देते हैं। पूरे भूमंडल के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित एक साधु की कुटिया में गए हैं तो साधु ने पानी का भी नहीं पूछा, पर महाराज परीक्षित को पानी चाहिए था। तो महाराज परीक्षित ने सोचा होगा कि ये वास्तव में ध्यान कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं। होता है कभी घर पे कोई ऐसे मेहमान आते हैं और हमारी इच्छा नहीं होती है तो हम सो जाते हैं। तो वास्तव में ये ध्यान कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं? महाराज परीक्षित केवल परीक्षा लेना चाहते थे। कुटिया में आए और मरा हुआ सांप एक नीचे पड़ा था, उसे लेकर उस ऋषि मुनि के गले में डाले। गले में डालकर देखा तो ऋषि मुनि तो ध्यान में ही थे। महाराज परीक्षित समझ गए बेचारे ध्यान में बैठे हैं। महाराज परीक्षित वहां से निकल गए। महाराज तो निकल गए परंतु यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। और वह बालक ने यह नहीं देखा सर्प जीवित है या मरा हुआ है, उन्होंने देखा कि एक राजा आप उसके ऋषि के गले में सर्प डाल रहा है। तो वह ऋषि मुनि जिसका नाम था समीक मुनि, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी बालक नदी में स्नान कर रहा था और यह बालक उस ऋषि के पुत्र को जाकर बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे उस नदी में खड़े खड़े जल लेकर उसने श्राप दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उस व्यक्ति को आज से सातवें दिन के बाद तक्षक नाग आकर डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीवन का बहुत बड़ी घटना यहां पर आई। सिंगी दौड़ता दौड़ता घर पर आया। घर पे आकर कुटिया में आकर देखा तो वह मरा हुआ सर्प था। तब सिंगी अपने पिता समीक ऋषि को कहता है कि पिताजी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। बोलो बेटा क्या भूल हुई? तो सिंगी ने कहा पिताजी मैं समझा था कि आपके गले में जीवित सांप डाला गया है परंतु यहां आकर देखा तो मरा हुआ सांप। पिताजी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी भूल है? तब श्रृंगी ने कहा पिताजी मैंने सुना कि किसी व्यक्ति ने आपके गले में सांप डाला है तो मैंने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया है कि वह सातवें दिन के बाद तक्षक नाग आकर उसे मार डालेगा। पिताजी ने समीक ऋषि ने कहा कि बेटा यह बहुत गलत किया है, अब जल्द से जल्द यह जानना चाहिए कि वह है कौन। तब समीक मुनि ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठकर पता लगाए कि वह कौन व्यक्ति था जिसने मेरे गले में श्राप डाला था और मेरे पुत्र ने जिसे श्राप दिया है। ध्यान में पता चला समीक ऋषि को कि वह और कोई नहीं इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। भागवत में वह प्रसंग आया है। समीक ऋषि दुख के साथ अपने पुत्र को कह रहे हैं कि बेटे जीवन में बहुत बड़ा गलत काम तूने किया है। बेटे तूने किस व्यक्ति को श्राप दिया तू नहीं जानता है। यह परीक्षित साक्षात धर्म था। यदि परीक्षित इस भूमंडल पर नहीं रहेगा तो कलयुग हावी हो जाएगा। ये परीक्षित यदि चाहे तो कलयुग को यहां पर आने न दे, इतना सामर्थ्य था परीक्षित में। तूने ऐसे परीक्षित को श्राप दे दिया। वास्तव में परीक्षित महाराज में यह शक्ति थी, वह चाहे तो कलयुग आए ही नहीं परंतु इसने श्राप दे दिया। बेटे जब राजा अच्छी नहीं रहती है तो प्रजा बिगड़ जाती है, प्रजा में चोरी होने लगती है, सब लोग गाली बोलने लगेंगे, अनीति होगी, अधर्म होगा, अधर्म बढ़ेगा। तुमने बहुत गलत काम किया है और यह सभी अधर्म सभी फलों का भागी तुम हो। इस प्रकार से बहुत पछतावा किया। समीक ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पुत्र से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसे क्षमा करना। और तुरंत स्वामी कृष्ण ने कहा, किसी को भेजा कि अब जो हुआ वो हुआ, परंतु परीक्षित महाराज को जाकर बताओ कि तुम्हें 7 दिन में मरना है, कुछ भी उपाय करना है तो कर लो। तुरंत एक व्यक्ति गया परीक्षित महाराज के पास पहुंचा और परीक्षित महाराज को जैसे ही खबर मिली कि 7 दिन के बाद मुझे मरना है, तो परीक्षित महाराज मरने से बचने का उपाय नहीं किए। परीक्षित महाराज जैसे ही सुने कि मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूं, तुरंत परीक्षित महाराज अपनी लाखों लाख दास दासियां नौकर चाकर राज रजवाड़ा सब कुछ अपने पुत्र को देकर महाराज परीक्षित जंगल में निकल पड़े। सब कुछ छोड़ दिया महाराज परीक्षित ने, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जब मृत्यु का समय निकट आए तो घर छोड़ देना चाहिए। आगे अजामिल के प्रसंग में आएगा, व्यक्ति को घर में कभी भी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि घर में तो ऑलरेडी आसक्ति होती है। और जब कोई व्यक्ति मरने में पड़ता है, मान लीजिए 7 दिन के बाद मरने वाले, तो कितने लोग मिलने आएंगे? मरने वाले को बहुत मिलने आते हैं, और जब सब लोग मिलने आएंगे तो मेरा पुत्र आया, पुत्री आई, सबको देखने में ही वह रह जाता है। इसलिए जब मृत्यु का समय निकट आए तो घर छोड़ देना चाहिए। इसलिए कहते हैं, मरना भलो विदेश में जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होए। घर में नहीं मरना। महाराज परीक्षित घर छोड़कर निकल गए और आए गंगा जी के पवित्र धारा के तट पर, हरिद्वार में महाराज परीक्षित पहुंचे तीर्थ स्थान पर। और हरिद्वार में जाकर महाराज परीक्षित के मन में एक ही जिज्ञासा है, क्या करूं मैं, क्या करूं? महाराज परीक्षित मन ही मन में सोच रहे हैं, अब क्या करूं, 7 दिन में मरना है। कुछ कुछ लोगों को पूछने लगे, बोल बताओ क्या करना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति ने सही उत्तर नहीं दिया। कुछ लोग ने कहा कि दान कीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा, दान करने से पुण्य होता है, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में भले बहुत भोग है, तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग में यद्यपि बहुत भोग है परंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, परंतु वह पुण्य का फल समाप्त होने पर वहां से भी यहाँ पृथ्वी में आना पड़ता है। नहीं, बहुत बहुत उपाय बताए परंतु परीक्षित महाराज को ठीक नहीं लगे। अंत में परीक्षित महाराज के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, मुझे भगवान की गाथा सुननी है, मैं मरूंगा तो भगवान की कथा सुनकर, भगवान की लीला सुनकर मरूंगा। परीक्षित महाराज के मन में जब यह इच्छा हुई, यह बात पूरे संसार में वायु के वेग में फैल गई। संसार के सब लोग जान लिए कि महाराज परीक्षित जो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है, इस पृथ्वी के राजा है, उसे श्राप लगा है और वह घर छोड़कर निकले हैं, इसलिए जरूर ना जरूर कुछ अच्छा काम होने वाला है। इसलिए परीक्षित महाराज जब ऐसी जिज्ञासा किए कि मुझे भगवत कथा सुननी है, तो सभी ऋषि मुनि अपना अपना कुटिया छोड़कर, अपना अपना स्थान छोड़कर, सौ शिष्यात अपने सभी शिष्यों को लेकर जहां पर परीक्षित महाराज उपस्थित थे वहां पर सब लोग आने लगे। वर्णन है कौन कौन आए, कहते हैं, तत्रोपजत भुवनम पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों को साथ साथ लेकर आए। कौन कौन आए, अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वा। अत्रि ऋषि आए, वशिष्ठ ऋषि आए, च्यवन ऋषि आए। ये च्यवन ऋषि आप जानते होंगे, ये जब डावर च्यवनप्राश खाते हैं, ये च्यवन ऋषि ने ये च्यवनप्राश बनाया है। और वास्तव में हम जो खाते हैं वो तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल च्यवनप्राश खाकर व्यक्ति बूढ़ा भी जवान हो सकता है, परंतु ये तो बस केवल नाम दिया है। कौन कौन आए, अत्रि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन ऋषि आए, शरद्वान आए, अरिष्ट नेमी ऋषि आए, भृगु मुनि जो सभी ऋषि मुनियों में बड़े ज्येष्ठ हैं, अंगिरा ऋषि आए, पराशरे गादि सुतोत राम अतथ्य इंद्र प्रमदेत्म वाहो, विश्वामित्र जी वहां पर आए, 21 बार नक्षत्री करने वाले परशुराम भी आए कि कुछ मिलेगा यहां पर, पुत्र ऋषि आए, इंद्रधम ऋषि आए, और इत्मवाह ऋषि आए और मेधातिथि ऋषि आए, असित देवल ऋषि आए, अष्टिशेनो ऋषि आए, भारद्वाज आए, गौतम आए, पिपलाद आए और ये मत समझिए अकेले आए, अपने हजारों हजारों शिष्यों को लेकर आए। ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पर मैनेजमेंट करो रहो, नहीं, चलो साथ में चलो मेरे साथ सुनने के लिए। गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने साथ अपने शिष्यों का भी उद्धार करे। तो आजकल के गुरु तो कहते रहो आप पढ़े रहो मैं जाकर आता हूं, ऐसे नहीं थे। सबको साथ में लेकर, सब शिष्या पहले ही कहा गया है अपने अपने शिष्यों को साथ में लेकर आए। गौतम ऋषि, पिपलाद ऋषि आए, मैत्रेय जी आए, औरव मुनि आए, कणव ऋषि आए, कुंभ योनी अगस्त्य ऋषि भी पधारे। और इतना ही नहीं, भागवत के रचयिता भगवान वेद व्यास जी वहां पर उपस्थित हुए। और वेद व्यास जी तो आए, उनके गुरु नारद मुनि भी आ गए। अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वरिया राजर्षि वरिया अरुणाच दाय, और भी अन्य अन्य देव ऋषि देवर्षि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ऋषि राजर्षि राज ऋषियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि वहां पर आने लगे। और नभ्यच राजा शिरसा वंदे, जितने हजारों की संख्या में ऋषि मुनि वहां पर, ऋषि मुनियों का मेला लग गया। और सभी ऋषि मुनियों को देखकर महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए और सभी ऋषि मुनियों को महाराज परीक्षित प्रणाम करते जा रहे हैं। और प्रणाम करके महाराज परीक्षित का उद्गार है, महाराज परीक्षित कहते हैं कि धन्य हो गया आज मैं, यहाँ पर हजारों हजारों ऋषि मुनि आए हैं, अब चाहे तक्षक नाग आए या चाहे स्वयं साक्षात काल भी आ जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। न मोपयातम प्रवयंतु विप्रा गंगाच देवी घृतचित्त मीशे, गंगा के तट पर खड़ा हूँ, हजारों ऋषि मुनियों के बीच में खड़ा हूँ, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। सभी ऋषि मुनि बैठे हैं हजारों की संख्या में, महाराज परीक्षित उस सभा में खड़े होकर उस ऋषि मुनियों के प्रति जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं कि हे ऋषि मुनियों, हे ऋषि मुनियों, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 7 दिन में जिसकी मृत्यु है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परंतु उस हजारों हजारों ऋषि मुनियों में से कोई नहीं बोला, क्योंकि बोलने थोड़ी ना आए थे, सुनने आए थे। कोई नहीं बोला, सन्नाटा एकदम शांति, कोई नहीं बोला। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते रह गए। परंतु भक्तों, जब सही जिज्ञासा होती है तो उस पर भगवान की निश्चित कृपा होती है। भगवान ने देखा कि सही जिज्ञासा है, इसलिए यहाँ पर सही व्यक्ति को भेजना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है, उस वक्त भगवान के योग से, भगवान की कृपा से व्यास नंदन भागवत भूषण भागवत रत्न भागवत प्रधान प्रातः समरणीय परम विरक्त दिव्य लक्षण वाले स्वतंत्र गति से पृथ्वी पर विचरण करने वाले भागवत भास्कर परम आदरणीय व्यास नंदन परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए। बोलिए सुखदेव गोस्वामी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब लोग प्रेम से गाइए, सुखदेव गोस्वामी आए हैं हमारी सभा में भागवत सुनाने के लिए। ह
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर छवि है 16 साल के बालक है बिल्कुल भगवान कृष्ण के समान उनका वर्ण है बहुत सुंदर खुले बाल है और जब सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं तो उनके पीछे कई सारे लोग पीछे पीछे चलते आए हैं सुखदेव गोस्वामी निर्वस्त्र किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं क्योंकि संसार की सभी आसक्ति से उपरांत कई सारे बालक कई सारी स्त्रियां उनके पीछे पीछे उनका मजाक करने के लिए चल रही थी परंतु सुखदेव गोस्वामी उन सब बातों से विचलित नहीं हो रहे थे जैसे सुखदेव गोस्वामी इस सभा में पहुंचे और महाराज परीक्षित जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को देखे महाराज परीक्षित के समेत हजारों ऋषि मुनि उठकर नाचने लगे और सब लोग गाने लगे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
सब ऋषि मुनि आनंद में मग्न हो गए सुखदेव गोस्वामी के चरण में सब लोग गिरे यद्यपि 16 साल के हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़ी उम्र वाले सब सुखदेव गोस्वामी के चरणों में गिरे महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी का हाथ पकड़कर व्यासपीठ के ऊपर आसीन किया और सब लोग सुखदेव गोस्वामी के चरणों में
उनके मुख से भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और सुखदेव गोस्वामी क्या किए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन स्वीकार किए हैं, आइए सब लोग सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करें।
यह स्वानुभाव मखिलम श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिति तिष्ठाम तमोन्धम संसारिणां करुणया हपुराण गुह्यम तं व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना।
सुखदेव गोस्वामी व्यास मंच पे बैठे हैं, सब लोग के मन में धीरज आई। महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के प्रति कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव गोस्वामी, संसार के सभी लोगों के आप गुरु हो, क्योंकि आप गुरु हो, बड़े हो और सभी चीज में समर्थ हो, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा पुरुष जो म्रियमाण हो, जो मरने वाला हो, ऐसा पुरुष जिसके सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में क्या कर्तव्य है? यह श्रोतव्य मथो जप्यम यत कर्तव्यम निर्भु प्रभो स्मरतव्य भजतीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे यह बताइए कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या जपना चाहिए, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति के लिए जो भी करना हो तो मुझे बताइए। महाराज परीक्षित का हृदय बहुत उदार है। वास्तव में महाराज परीक्षित ये अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, महाराज परीक्षित ये प्रश्न हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि म्रियमाण व्यक्ति महाराज परीक्षित नहीं, म्रियमाण तो हम सब लोग हैं। महाराज परीक्षित तो 7 दिन के बाद मरने वाले थे, उसके पहले उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, परंतु हमारे जीवन में 7 दिन नहीं, 7 घंटा नहीं, 7 मिनट में भी हम मर सकते हैं। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। म्रियमाण महाराज परीक्षित नहीं, म्रियमाण तो हम लोग हैं। महाराज परीक्षित पूरी दुनिया के, पूरे जगत की ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए सुखदेव गोस्वामी, मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृह मेधिनाम न लक्ष्यते अवस्यानम अपि गो दोहनम क्वचित।
मैं जानता हूं प्रभु, आप परम विरक्त हो, आपकी संसार में आसक्ति नहीं है, किसी गृह में आसक्ति नहीं है, आप भगवान के परम भक्त हो। मैं यह भी जानता हूं कि आप किसी जगह पर 2 मिनट के लिए भी नहीं खड़े रहते हो, गो दोहन काल मात्रेण केवल जब तक गाय का दूध दोहा जाता है तब तक आप उस जगह पर खड़े रहते हो, उससे ज्यादा एक जगह पर आप खड़े भी नहीं रहते हो, मैं जानता हूं। सत्य बात है, सुखदेव गोस्वामी कहीं जगह पर उनकी आसक्ति नहीं थी, कहीं जगह पर वो रहते टिकते नहीं थे। कहावत है, निर्भयता भला संत चलता भला। सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त थे, विरक्त तो मैं भी चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ। स गो दोहन, केवल जहां पर जिस जगह पर गाय को दुहा जाए वहां पर सुखदेव गोस्वामी खड़े रह जाते, और वह भी दूध मांगने के लिए नहीं, गाय का दुहन देखते हुए सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण लीला का स्मरण हुआ था कि कृष्ण भी इसी प्रकार गाय के साथ खेलते रहते होंगे। ये वह गाय, मैं जानता हूं सुखदेव गोस्वामी कि आप परम विरक्त हो, आप एक जगह पर ज्यादा नहीं टिकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मेरी जिज्ञासा है, मैं जिज्ञासु हूं, आप कहने में समर्थ हो, मैं सुनने का इच्छुक हूं, कृपया करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भक्तों, हम सब लोग मरने वाले हैं, सब लोग मर रहे हैं, पहले ही सुना, तो मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे हैं, तो यह प्रश्न का उत्तर हम आपको कल देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।